ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम पढ़ रहे हैं स्कंद 9 अध्याय 4, दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। श्लोक संख्या 69। उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत् अयं हि आत्माभिचारस्ते यतस्तं याहि मां चिर माचिरं साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तुः कुरुते शिवम्। उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत् अयं हि आत्माभिचारस्ते यतस्तं याहि माचिरं साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तुः कुरुते शिवम्। उपायं कथयिष्यामि तव विप्र शृणुष्व तत् अयं हि आत्माभिचारस्ते यतस्तं याहि माचिरं साधुषु प्रहितं तेजः प्रहर्तुः कुरुते शिवम्। प्रहर्तुः कुरुते शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उपायम, इस भयावह स्थिति से बचने का उपाय। कथयिष्यामि, तुम्हें बतलाऊंगा। तब इस संकट से तुम्हारे उद्धार का। विप्र, हे ब्राह्मण शृणुष्व, मुझसे सुनो। तत् जो मैं कहूँ, अयम तुम्हारे द्वारा की गई कार्यवाही ही निस्संदेह आत्माभिचार, स्वयं से ईर्ष्या। तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु बन गया है ते तुम्हारे लिए। यतः, जिसके कारण। तम, उसको, महाराज अम्बरीश को। याही, तुरंत जाओ। माशिरम, एक क्षण भी देरी ना करो। साधुषु, भक्तों को। प्रहितम, प्रयुक्त। तेजह, शक्ति। प्रहर्तुः, कर्ता का। कुरुते, करता है। अशिवम, अमंगल। अनुवाद इस प्रकार से है। हे ब्राह्मण, अब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए उपदेश देता हूँ, मुझसे सुनो। तुमने महाराज अम्बरीश का अपमान करके आत्म द्वेष से कार्य किया है, अतएव तुम एक क्षण की भी देरी किए बिना तुरंत उनके पास जाओ। जो व्यक्ति अपनी तथाकथित शक्ति का प्रयोग भक्त पर करता है, उसकी वह शक्ति प्रयोक्ता को ही हानि पहुंचाती है। इस प्रकार कर्ता या विषयी को हानि पहुंचती है, विषय को नहीं। तात्पर्य, वैष्णव सदा से अभक्तों की ईर्ष्या का विषय बनता रहा है, चाहे वह अभक्त उसका पिता ही क्यों ना हो। उदाहरणार्थ, हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद महाराज से ईर्ष्या करता था, लेकिन यह ईर्ष्या प्रहलाद के लिए नहीं अपितु हिरण्यकशिपु के लिए घातक सिद्ध हुई। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र के विरुद्ध जितनी भी कार्यवाहियां की, उन्हें भगवान गंभीरता पूर्वक देखते रहे। और जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने ही वाला था, तो भगवान साक्षात प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मार डाला। वैष्णव के प्रति की गई सेवा धीरे धीरे संचित होती रहती है और भक्त के लिए वही संपत्ति बन जाती है। इसी प्रकार भक्त के विरुद्ध किए गए हानिप्रद कार्यकलाप धीरे धीरे कर्ता के पतन के कारण बनते हैं। दुर्वासा जैसे महान ब्राह्मण एवं योगी भी घोर संकट में था, क्योंकि उसने शुद्ध भक्त महाराज अम्बरीश के चरण कमलों पर अपराध किया था। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामेहं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये प्रसंग बहुत ही फेमस प्रसंग है, लगभग सभी इसको बारंबार सुनते हैं, चर्चा करें हैं, जानते हैं कि किस प्रकार महाराज अम्बरीश यज्ञ कर रहे थे और जब पारण का समय था तो उस समय दुर्वासा मुनि वहाँ पे पधारे और पारण का तो वो स्नान करने के लिए गए जब दुर्वासा मुनि तो यमुना में, तो पारण का समय बीतते जा रहा था और अम्बरीश महाराज को चिंता हो रही थी कि व्रत को पारण कैसे किया जाए। और उन्होंने जो है ब्राह्मणों सलाह करके जल लिया ताकि अतिथि सत्कार भी हो, कि अतिथि से पहले खाया भी नहीं है और व्रत का पारण भी हो जाए। तो दोनों मर्यादा दोनों कोई अतिथि के प्रति अपराध भी ना हो और व्रत भी भंग ना हो, इसका समाधान था जल पीना। लेकिन जैसे ही जल पिया दुर्वासा मुनि वहाँ आ गए और जान गए कि इन्होंने जल पिया है तो बड़े क्रोधित हो गए और उनके अपने शिखा से एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न किया उनके मारने के लिए। लेकिन तभी सुदर्शन भगवान के वहाँ पर आए और उस कृत्या का वध किया और फिर दुर्वासा मुनि के पीछे लगे। दुर्वासा मुनि भागते भागते ब्रह्मा जी के पास शिव जी के पास गए, लेकिन उन्होंने बोला कि ये तो भगवान का चक्र है, हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर वेरी सॉरी। और उन्होंने बोला कि अब भगवान का अस्त्र तो भगवान के पास जाइए। दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में जाते हैं और भगवान विष्णु भी बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी, भगवान भी बोलते हैं कि दुर्वासा मुनि क्षमा चाहता हूँ, मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपने मेरे भक्तों के प्रति अपराध किया है, मेरे महान भक्त अम्बरीश के प्रति अपराध किया है। और फिर भगवान पिछले 6-7 श्लोकों के अंदर भगवान का अपने भक्तों से क्या प्रेम है और भक्तों से भगवान के प्रति, भक्तों का क्या प्रेम भगवान के प्रति, ये इस परस्पर प्रेममय संबंध का के बारे में प्रवचन करते हैं दुर्वासा मुनि को जो है। और बहुत ही सुंदर सुंदर श्लोक इस पूरे प्रसंग के अंदर, बहुत ही फेमस श्लोक भी जो कि अधिकांश कोट होते हैं, अहम भक्त पराधीनो ही स्वतंत्र इव द्विज। और कल भी श्लोक आया, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय अहम मदन्य ते न जानती ना हम तेभ्य मनागपि। वो बोल रहे हैं कि मेरे भक्त जो हैं साधवो हृदय मह्यम, कि जो भक्त हैं मेरे हृदय में रहते हैं, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, मेरे भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानते, मैं उनके अलावा कुछ नहीं जानता, है ना। तो वास्तविक प्रेम, दुनिया में लोग बोलते हैं लव इज ब्लाइंड, पर वास्तविकता में वो काम होता है, लस्ट होता है। असली प्रेम भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों के बीच में ही प्राप्त होता है और वो वास्तविकता में, भगवान ये बता रहे हैं कि वो असली प्रेम वास्तविकता में अंधा होता है, अर्थात भगवान शुद्ध भक्तों के अलावा किसी को नहीं जानते, शुद्ध भक्त भगवान के अलावा किसी को नहीं जानते। और ये श्लोक के अंदर जो है भगवान दुर्वासा मुनि को उपाय बता रहे हैं कि अगर प्राण बचाने हैं और तुम्हारी रक्षा क्या उपाय है। उपायं कथयिष्यामि तव विप्र, कि हे विप्र हे ब्राह्मण, तव मतलब तुम्हारा, तुम्हारे को मैं एक उपाय कहता हूँ। शुणुष्वत, सुनो उसे ध्यान से, क्योंकि इसलिए सुनो क्योंकि वो इतना सरल उपाय नहीं है। क्या है? अहम ही आत्मा विचारस्ते, कि अभी तुमने जो कार्य किया है, ये जो कार्य किया अयम ही, वो निस्संदेह क्या है, आत्म अभिचार है, कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था और तुमने आत्म द्वेष, ऐसा नहीं अम्बरीश, तुमने अपने प्रति भी द्वेष रखते हुए कार्य किया। या तस्तम या ही मा चिरम, और इसीलिए अम्बरीश से भी ईर्ष्या किया और अपने आप से भी ईर्ष्या किया तुमने। क्या है इसके विषय हम चर्चा करेंगे, आत्मद्वेष है क्या, ये एनवी क्या है। इसीलिए इसके उपाय के लिए तुम क्या करो, मा चिरम, तुरंत ही कहाँ जाओ, अम्बरीश के पास जाओ। क्यों जाओ? साधुषु प्रहितम तेज, कि यदि किसी साधु के प्रति किसी ने तेज शक्ति का इस्तेमाल किया है तो प्रहरतु, वह शक्ति जिस पे उपयोग किए उसका हानि नहीं करती, वरन उस साधु का कुछ दुरुपयोग का नुकसान नहीं करती। वह शक्ति किसका नुकसान करती है, जिसने उस शक्ति को अपनाया है। कुरुते अशिवम, शिवम मतलब शुभ, तभी शिवजी का नाम है मंगलकारी, और अशिवम मतलब अमंगलकारी, जो अशुभ हो। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी भगवान के भक्त के प्रति कुछ गलत एक्शन करता है, कर्म करता है नुकसान करने वाला, तो और ऐसा कुछ बल का उपयोग करता है, तो वह शक्ति केवल उसी का नुकसान करती है, उस व्यक्ति का, और उसका अमंगल करती है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ। और अगले दो श्लोक के अंदर भी इसी प्रकार से भगवान को और उपदेश देंगे कि उनके पास जाओ। और अगला अध्याय है दुर्वासा मुनि को जीवन दान, है ना। तो ऐसे तो ये दुर्वासा मुनि का जो प्रसंग है इसके अंदर बहुत सारी शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन आज क्योंकि ये वर्ड आया है आत्म अभिचार, आत्म द्वेष, और भक्तों के समुदाय में भी एक भक्त, खासकर जब भक्तों के समुदाय में पुराने भक्त होने के बाद में एक आंतरिक स्ट्रगल हमारे अंदर, एक आंतरिक संघर्ष होता है अपने अनर्थों से दूर प्राप्त होने का, तो इंडिविजुअल अनर्थाज और समुदाय में फिर कलेक्टिव अनर्थाज, और ये बहुत सूक्ष्म होते हैं जो हमारे हृदय के अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य। और जैसे जैसे भक्ति में भक्त आगे प्रगति करते हैं तो इन अनर्थों को समझना और जान पाना और इनको उखाड़ फेंकना ये इतना आसान नहीं होता। और उन्हीं में से एक अनर्थ है द्वेष, ईर्ष्या, एनवी। तो मैंने कुछ वरिष्ठ भक्तों के प्रसंग के प्रवचनों से ही कुछ ना कुछ कट पेस्ट किया है, और मेरा कोई इसके अंदर योगदान नहीं, लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम एनवी के विषय में चर्चा करेंगे कि एनवी या द्वेष ईर्ष्या है क्या, है ना। तो ये द्वेष वास्तविकता में, और हम सबको इसका अनुभव होगा कि हमसे भी लोग द्वेष करते हैं, और कभी ना कभी हमें भी लोगों से द्वेष होता है, हो सकता है हमेशा भी हो, मात्रा अलग हो सकती है। तो ये द्वेष है क्या, कहाँ इसकी उत्पत्ति है? तो इसका जो उत्पत्ति है, रूट कॉज है, वो है भगवान श्री कृष्ण से हमारा द्वेष बेसिकली, क्योंकि कृष्ण से द्वेष होने के कारण ही व्यक्ति को अन्य सब जीवात्माओं से द्वेष होता है। तो यदि जब हम देखें कि हमारा किसी को द्वेष है तो हमें जानना चाहिए कि इसकी जड़ कहाँ पर है, वो जड़ है भगवान श्री कृष्ण से जो है द्वेष के अंदर। साधारण शब्दों में अगर इसे समझा जाए तो एक अन्य प्रकार समझ सकते हैं कि जो व्यावहारिक ईर्ष्या है, क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि कृष्ण से द्वेष है तो कैसे अन्य जीवों के प्रति द्वेष हमें हो रहा है, इसको एक अलग प्रकार समझने का प्रयास करें इसी चीज को। वो है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, बद्ध जीवात्मा के अंदर, एक अहंकार की भावना होती है, फॉल्स ईगो, और वो अहंकार दो प्रकार से, ऐसे कई प्रकार से मैनिफेस्ट होता है, लेकिन दो मुख्य प्रकार से वो मैनिफेस्ट होता, प्रकट होता है, कि मैं महान हूं और दूसरा मैं भोगता हूं, कि मैं महान होना चाहिए हूं और मैं भोगता हूं। हर व्यक्ति दुनिया भोग ही करना चाहता है, कोई भी चीज प्राप्त हो तो मैं उसका भोक्ता बनूं। और जब कोई और किसी और की महानता को हम देखते हैं या किसी और को हम देखते हैं कि वो भोक्ता बन रहा है तो होता क्या है, तो ईर्ष्या होती है, वो क्यों महान है, वो क्यों भोक्ता और मैं क्यों नहीं, why him why not me। तो मैं इन वस्तुओं का इन विषयों का भोग क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो सभी जानते हैं कि क्लेशियस क्ले करके हैवी वेट लिफ्टिंग चैंपियन थे, मोहम्मद अली के नाम से सब जानते हैं। तो उन्होंने एक बार ऐलान किया था कि आई एम द ग्रेट, आई एम द ग्रेटेस्ट, अली द ग्रेटेस्ट, ऐसे वो, क्योंकि वेट लिफ्टिंग चैंपियन थे बहुत ही बड़े। कुछ वक्त आगे आना चाहें तो आ सकते हैं, क्योंकि पीछे वक्त आ रहे हैं, तो अगर थोड़ा बहुत आगे आगे आना चाहें तो। लेकिन कुछ सालों बाद उन्हें जो है पार्किंसन डिजीज हो गया, तो पार्किंसन में आपके हाथ में ग्रिप नहीं रहता, ऐसा हाथ कांपता है। तो एक ओलंपिक गेम के अंदर उन्हें टॉर्च लाइट मशाल प्रारंभ करने जलाने के लिए बुलाया गया, तो वो मशाल को भी नहीं उठा पा रहे थे गेम प्रारंभ करने के लिए, तो किसी को हाथ पकड़ के जलवाना पड़ा। तब उन्होंने इंटरव्यू में बोला आई एम द ग्रेटेस्ट, अली द ग्रेटेस्ट फूल, है ना, कि यही हाथों की शक्ति पे मुझे बहुत अधिक अभिमान था कि मैं किसी भी व्यक्ति को ध्वस्त कर सकता हूँ। आज इन हाथों में इतनी भी शक्तियां नहीं है कि एक मशाल को उठा सकें और जला सकें। तो लेकिन मैं ये इस प्रसंग को यहाँ पे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि व्यक्ति सोचता है आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं महान और मैं ही भोगता हूँ, और भूल जाता है कि नहीं, कृष्ण ही महान है और कृष्ण ही एकमात्र भोगता है। और कृष्ण भोगता है, लेकिन भगवान कृष्ण भी महान है, बिल्कुल वास्तविकता में महान है। और उनकी महानता क्या समझ सकते हैं, जैसे यहाँ कई सारे गृहस्थ भक्त हैं, आप अपने छोटे बच्चों को पार्क में लेके जाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क में लेके जाते हैं, तो लेके तो आप जा रहे हैं, लेकिन वहां पे भोग कौन करता है, बच्चा करता है ना, वो एंजॉय। और बच्चा क्या सोचता है, मैं ही भोगता हूं, है कि नहीं। एम्यूजमेंट पार्क बनाने वाला कौन है, कोई व्यक्ति है। आपकी फीस के द्वारा एंजॉय वैसे कौन करेगा, वही व्यक्ति एंजॉय, वही एक्चुअली एंजॉयर है। लेकिन बच्चे को लगता है कि मैं एंजॉयर हूं, है ना। और आप भी लेके गए बच्चे के एंजॉयमेंट के लिए, चलो ठीक है, यू नो, ये भौतिक जगत उस एम्यूजमेंट पार्क के समान है, भगवान ने बनाया है और हम सब उस बच्चे के तो समान है। और सबको लगता है कि ये एम्यूजमेंट पार्क हमारे भोग के लिए बना है, है ना। बना किसके लिए है, जिसने एम्यूजमेंट पार्क बनाया है वही उससे कमा रहा है, वही एंजॉयर है, बाकी लोग टेम्पररी एंजॉयर्स हैं, आए थोड़ा कहे हैं। लेकिन हम उस बच्चे के समान है जो अज्ञानता के सोचता है कि मैं ही एंजॉयर हूँ इसका, है ना, इस झूले का या इस पार्क का, सैर सपाटे का इत्यादि। ये कृष्ण की माया है जो व्यक्ति को ऐसे इंजॉयर भोक्ता बनने का जो एक भ्रम क्रिएट कर देती है। जय श्री राधे रमण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की। तो जो है, तो जितनी बार भी हम इस भौतिक जगत को भोगने का प्रयास करते हैं, यू नो, एक्चुअली वी आर एनवियस ऑफ कृष्ण, क्योंकि इंजॉयर कौन है, कृष्ण है, भोक्ता कृष्ण है। और मान लीजिए मेरी कोई वस्तु हो, मेरे पास कोई मोबाइल हो या अच्छा लैपटॉप हो, और आप सोच रहे हैं कि मैं इसे उठा करके मैं इसको भोगने का प्रयास करता हूँ, तो मेरे प्रति आप ईर्ष्या का प्रदर्शन कर रहे हैं, है कि नहीं, सरल सी बात है। तो उसी प्रकार से जब हम भूल जाते हैं कि नहीं, इस पूरे ब्रह्मांड के इंजॉयर भोक्ता एकमात्र श्री कृष्ण भगवान है, और हम इंजॉय करने का जब जब भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, तब तब हम अपने ईर्ष्या का भगवान के प्रति प्रदर्शन करते हैं। और ये बद्ध जीव का स्वाभाविक, कैसा मतलब अस्वाभाविक लेकिन स्वभाव है ना, है तो नेचुरल, बट दिस हैज बिकम हिज सेकंड नेचर टू बी इंजॉयर। एक व्यक्ति गौड़ीय मठ में आया एक बारी और 10 रसगुल्ले खा गए, ऐसा अच्छे बने होंगे बंगाली रसगुल्ले, है ना। तो भक्ति सिद्धांत प्रसाद था, ऑफकोर्स भगवान का प्रसाद था, लेकिन एक एक करके 10 रसगुल्ले खा गए। तो भक्ति ठाकुर ने टिप्पणी की, हु इज द इंजॉयर, यू नो, हु इज सपोज टू इंजॉय हुम, किसको किसका भोग करना चाहिए, इस व्यक्ति को भगवान के प्रसाद का भोग करना चाहिए, इज ही सपोज टू इंजॉय कृष्ण, और कृष्ण इज सपोज टू इंजॉय हिम, इज प्रसाद सपोज टू एंजॉय हिम और ही सपोज टू एंजॉय प्रसाद, यू नो, क्योंकि जब भी रसगुल्ला आएगा तो लगता है मेरे भोग के लिए बना है, बट वास्तविकता में भगवान की कृपा है और मैं उनके भोग के लिए बना हूँ, चाहे हमें सेवन करना हो, मुझे प्रसाद का महाप्रसाद सेवन करना है कि नहीं। तो ये जो भोक्ता बनने की भावना है, कदम कदम पे हम अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं, है ना। और इसी की वजह ईर्ष्या द्वेष होती है, और यही ईर्ष्या द्वेष जो है इवन भक्तों के समाज में भी, हालांकि नहीं होना चाहिए आइडियल समाज के अंदर, लेकिन फिर भी हम देखते हैं ऐसा होता है। और इससे हम नकार नहीं सकते कि प्रैक्टिसिंग डिवोटी साधक का जो समुदाय है, तो ये खासकर साथ के भक्तों में और जो भक्तों के साथ में ये ईर्ष्या फैल जाता है। एक बार दो व्यक्ति जो है भगवान की पूजा कर रहे थे और भगवान दोनों के सामने तपस्या कर रहे थे, भगवान दोनों साथ प्रकट हो गए। तो भगवान ने पहले व्यक्ति से मांगा, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो क्या वरदान चाहिए। तो बोला, मुझे एक बंगला दे दीजिए, छोटा घर है अभी बहुत, तो बड़ा एक अच्छा सा मकान दे दीजिए, बंगलो दे दीजिए। भगवान ने बोला ठीक है। तो भगवान ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, बोला भाई आपको क्या चाहिए। बोले भगवान आप उसको जो दें उसका दुगना मुझे दे दीजिए। तो उसने एक बंगला मांगा, आप मेरे को कितने बंगला दे दीजिए, दो बंगला। तो उसने देखा, अरे मेरे पास एक बंगला से दो बंगले। तो भगवान ने फिर बोला इससे, अब तुम्हें और क्या चाहिए पहले व्यक्ति से। बोला एक बड़ी गाड़ी दे दो, जो भी लेटेस्ट गाड़ी आई है वो गाड़ी दे दो। तो भगवान ने बोला ठीक है। देखा उसके पास दो गाड़ी हो गया। तो उसने बोला भगवान उसने क्या मांगा है। तो बोला देखो जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, और जो दूंगा उसका दुगना मुझे उसे देना है। तो बोला अच्छा ठीक है, आप क्या करो मेरी एक आंख फोड़ दो, तो क्या होगा, इसकी दोनों आंख चली जाएगी। फिर बोला मेरा एक हाथ तोड़ दो, तो उसके दोनों हाथ टूट जाएंगे, और मेरा एक पैर तोड़ दो, तो क्या होगा, उसके दोनों पैर टूट जाएंगे। ये है ईर्ष्या। उसको खुशी हो रही है, देखो इसका दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, दोनों आंख नहीं है, अरे तुम्हारा भी एक आंख एक हाथ और एक पैर गया। लेकिन ईर्ष्या का जो परिणाम है वो ये होता है, स्वयं का नुकसान है ना। तो अदर्स आर लूजर, ईर्ष्या के कारण दूसरे लोग निश्चित रूप से लूज करते हैं, वो खोते हैं, लेकिन आप भी खोते हैं, आपको कुछ प्राप्त नहीं होता है। ईर्ष्या गर्म अंगारों के समान है, जलता हुआ मान लीजिए कोयला कोई हाथ में रखे और सोचे कि भाई मैं जिससे मैं ईर्ष्या करता हूँ जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं दे के मारूंगा तो वो जल जाएगा, उसको लगेगी, लेकिन तब तक जब तक आप हाथ में अंगारा पकड़ के रखे हैं क्या होता है, आप ही का हाथ जलता है, नुकसान हमारा ही होता है। ये ईर्ष्या, तभी ये आत्मद्वेष, जब हम दूसरों के पे द्वेष करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा स्वयं का होता है। दूसरे का तो जिससे हम द्वेष करते हैं वो हो चाहे ना हो, लेकिन अपना नुकसान स्वयं होता ही होता है। और यहाँ पे देखिए दुर्वासा मुनि ने यही करके खुद जो है परेशानी के अंदर फंस गए। यहाँ पर व्यर्थ में ही अम्बरीश महाराज से द्वेष कर रहे थे। प्रभुपाद जी भागवतम के परपट में तो हमको नहीं इतना मिला, लेकिन प्रभुपाद जी एक प्रवचन के अंदर बताते हैं कि दुर्वासा वास एनवियस ऑफ महाराज अम्बरीश। फिर इसके अंदर भी आया है लेकिन मेरे नॉलेज में नहीं आया, लेकिन हमने और भक्तों से भी प्रवचन के अंदर सुना था कि वो बोले देखो मैं तो इतना वैरागी हूँ और ये राजा है और संसार में लिप्त है, और तो ऐसे करके उनको द्वेष था इस प्रकार से। तो उस द्वेष के कारण उन्होंने एक्ट किया। तो और ये जो ईर्ष्या है द्वेष है इस दुनिया में यहाँ तक बढ़ जाता है कि लोग बहुत ज़्यादा राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी तो दूसरे व्यक्ति की मृत्यु तक का भी प्लॉट करते हैं। हम देखते हैं ऐसा होता है, कोई इसमें अलग नहीं है, कोई इसमें सामान्य अखबार में आप पढ़ते हैं इसने उसकी हत्या कर दी क्योंकि यू नो इसने इसका प्रॉपर्टी छीन लिया ये वो। तो द्वेष के कारण होता है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है या जो व्यक्ति है वो मेरे से आगे ना बढ़े, है ना, मैं बढ़ू ना बढ़ू अलग बात है। उदाहरण दिया जाता है केकड़ों का, केकड़ा समझते हैं, क्रैब 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 मेंटालिटी, कि मान लीजिए यदि एक जग के अंदर एक बर्तन के अंदर हम कई सारे केकड़ों को डाल दें और आप दरवाजा उसका जो ढक्कन है खोल के रख दीजिए और वो केकड़े बाहर आ सकते हैं लेकिन एक भी केकड़ा बाहर नहीं आएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई एक केकड़ा ऊपर जाने का प्रयास करता है दूसरे केकड़े उसकी टांग खड़ के नीचे खींच देते हैं, बोले तुम कैसे ऊपर जा सकते हो हम नीचे हैं। तो ये होती है ईर्ष्या। अब चाहे तो वो सारे एक दूसरे का मिलके बाहर आ सकते हैं, दरवाजा ढक्कन खुला है लेकिन आएगा एक भी नहीं, है ना। तो दूसरा उदाहरण शास्त्र के अंदर तो बहुत उदाहरण देखते हैं, लेकिन एक उदाहरण में दिखाई पड़ता है महाराज चित्रकेतु, उनकी कई लाख रानियां थी, पुत्र नहीं था, और जब बड़ी रानी कृतज्युति महारानी के पुत्र हो गया, संतान हो गया अंगिरा मुनि के आशीर्वाद से, तो निश्चित रूप से राजा उस पुत्र को और उन महारानी को अधिक अटेंशन पे करने लगे। तो हुआ क्या, वो बाकी सब रानियों ने इस छोटे बच्चे को जहर देके मार डाला। तो ये होती है ईर्ष्या। तो कभी कभी ईर्ष्या अन्य लोगों का इतना नुकसान करने तक भी कि मृत्यु तक का भी सोच लेती है। ये बात सच है, दुनिया में भी आसपास हम आंख खोल के देखेंगे तो कोई भी देख सकता है कि क्या क्या षड्यंत्र लोग रचाते हैं ईर्ष्यावश होकर के, है कि नहीं। तो अब इस ईर्ष्या से दूर कैसे हुआ जाए, क्या हमें प्रयास करना चाहिए? तो पहला एक स्टेप है सही प्रकार से, मैं चार आपको सूत्र देने वाला हूं। तो पहला है एस्टिमेट, सही प्रकार से एस्टिमेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, तुलना करना, समझना बेसिकली, या मूल्यांकन करना, ये है। तो वी ओवर एस्टिमेट अवर गुड क्वालिटीज एंड वी अंडर एस्टिमेट और नेवर एस्टिमेट अवर बैड क्वालिटीज, है ना। व्यक्ति कभी भी अपने, हमेशा अपने, उसको लगता है मेरे पास कितना ज्यादा गुण है, कितना हुनर है, और मेरे अपनी कमी को वो हमेशा अंडर एस्टिमेट करता है। कमी तो बहुत थोड़ी सी है कि नहीं। जैसे गोपाल कृष्ण महाराज अधिकांश बोलते हैं कि आपका वजन होगा 70 किलो, लेकिन अहंकार का वजन कितना है, दुगुना, 140 किलो। कैसे? तो जो अहंकार है, तो इसके कारण व्यक्ति अपने गुणों को, तो स्वयं के गुणों को बढ़ाता रहता है, दूसरों के अपने ही दुर्गुणों को उसे छुपाता रहता है। और ये तो इसीलिए वास्तविकता का सही मूल्यांकन करना, तो चार परिस्थितियां जो है में हम मूल्यांकन टेस्ट कर सकते हैं। लगभग प्रत्येक के जीवन में, भक्तों के जीवन में ये चारों परिस्थितियां लगभग कभी ना कभी आती ही आती हैं। सबसे पहले परिस्थिति है जब किसी अन्य व्यक्ति को ज्यादा अटेंशन मिल रही हो, जब आध्यात्मिक गुरु या वरिष्ठ वैष्णव या अन्य वैष्णव उनको ध्यान दे रहे हैं, या समाज में किसी व्यक्ति को दूसरे लोग अधिक ध्यान दे रहे हैं, तब जब किसी को अधिक अटेंशन प्राप्त होती है। आप कहा से देखिएगा, बच्चों में आप ये सिंड्रोम बहुत इजीली देख सकते हैं। जैसे घर में जो बड़ा बच्चा होता है, छोटे बच्चे जब रहते हैं, तो जब दूसरी संतान आ जाती है तो स्वाभाविक होता है माता पिता का टेंशन जो छोटी संतान है उसके प्रति होता है, लेकिन बड़े वाले को हमेशा थोड़ा दिक्कत होता है कि यही आपका लाडला है कि नहीं। और कभी कभी वो जानबूझ के उस छोटे बच्चे को पिंच करते हैं, तकलीफ देते हैं ना, इस प्रकार से। तो माता पिता को भावना को समझना चाहिए। तो जब किसी अन्य व्यक्ति को अटेंशन प्राप्त होती है तो हृदय में थोड़ी चोट लगती है, इसे क्यों, मुझे क्यों नहीं, है कि नहीं। दूसरा एक स्थिति है जब किसी अन्य को जिम्मेदारी मिलती है या पद प्राप्त होता है, सेवा प्राप्त होती है, मुझे क्यों नहीं, मेरे को क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं प्राप्त हो रही, इनको दे रहे हैं, फेवर किया जा रहा है, पक्षपात किया जा रहा है। तीसरा, जब किसी अन्य व्यक्ति को कुछ रिसोर्सेज या सुविधाएं प्राप्त होती है लेकिन हमें नहीं प्राप्त होती है, तो मन में बड़ी, क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे क्यों नहीं सुविधा प्राप्त हो रही है। और चौथा, जब किसी अन्य को प्रशंसा प्राप्त होती है और मुझे नहीं प्राप्त होती है ना, हमें कम प्राप्त हो रही है, तब ईर्ष्या का असली टेस्ट होता है। और जो भक्त जितना अधिक जिम्मेदारी लेने का प्रयास करेंगे, ये बारम्बार इस चुनौतियों से हमको गुजरना पड़ता है ना। तो ये पहली स्थिति, जब किसी अन्य व्यक्ति को टेंशन प्राप्त हो रहा है। हमारा तो व्यवहारिक अनुभव भी है, स्वयं का, खुद का हमने फेस किया है, और जिन भक्तों को प्रचार करते हैं उनसे ही फेस किया है। प्रभु जी, आप हमसे तो बात ही नहीं करते, हमारी ओर देखते नहीं हो, उनसे इतना बात करते हो, है ना। ऐसे लोगों को शिकायत रहता है बहुत बारी, तो जो है आप तो उन्हीं की सुनते हो खाली। तो ये किसी भक्त ने कैसे लिखा, बोले, एवरीवन वांट फ्रंट सीट इन अ बस, द बैक सीट इन द चर्च, बट सेंटर ऑफ अटेंशन। अर्थात इंग्लिश में, दिस जस्ट मेड अ पैराफ्रेज, एवरीवन वांट्स फ्रंट सीट इन अ बस। बस में आप बैठते हैं तो कोई व्यक्ति पीछे की सीट पर नहीं चुनता, वो आगे की सीट पर बैठता है क्योंकि पीछे धटका लगता है। बैक सीट इन अ चर्च, चर्च में लोग जब, ऑफ कोर्स, या मंदिर में कह लीजिए या क्लासरूम के अंदर, अधिकांश लोग पीछे की सीट चाहते हैं, बोले आराम से थोड़ा सो जाएंगे, ना फ्रंट में सोएंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, है कि नहीं। तो बैक सीट इन अ चर्च बट सेंटर ऑफ अटेंशन, है ना। तो अटेंशन की जहां बात आती है वहां हर कोई व्यक्ति सेंटर चाहता है। इसीलिए जब हम बोलते हैं कृष्ण केंद्र बिंदु होने चाहिए, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है अपने आप को केंद्र बिंदु से हटाना, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए आप स्वयं अपने, अब वो अपने आप का जो सेंटर है वो स्वयं होता है हर व्यक्ति के तुलना के अंदर। तो किसी को लगता है क्यों गुरु महाराज उनको अधिक ध्यान दे रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं, क्यों वरिष्ठ वैष्णव उनको पूछ रहे हैं, हमको क्यों नहीं पूछ रहे? इसके अंदर व्यक्ति को एस्टिमेट करना चाहिए, क्या एस्टिमेट है कि वास्तविक परिस्थिति है क्या। खाली ऊपर से देख के नहीं सोचना चाहिए, उनसे बात करते हैं उनको ध्यान देते हैं, ऐसा नहीं, हमें सोचना चाहिए। हमें लगता है, व्यक्ति को लग सकता है कि या तो ये व्यक्ति मुझे नहीं समझता है, या शायद गुरु महाराज या वरिष्ठ वैष्णव मुझे नहीं समझते हैं, उन्होंने इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हैं। कब उनकी आंखों से अज्ञानता का पर्दा हटेगा, ओम अज्ञानते मेरे अंदर से उनके लिए होगा, लेकिन हमें ऐसा सोचना चाहिए शायद इस भक्त को गुरु या वरिष्ठ वैष्णव का अधिक ध्यान की आवश्यकता है। हो सकता है क्योंकि उसने कुछ विशेष सेवा कर रहा हो, इसीलिए ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ ऐसा विशेष कार्य किया हो उसने, कर रहा हो कोई महत्वपूर्ण कार्य लाइक दैट, है ना। तो अगर यह हो सकता है वो किसी इस समय आपदाग्रस्त स्थिति के अंदर हो, किसी समस्या से बीत रहा हो, इसीलिए वो अधिक ध्यान दे रहे हैं। ऐसा एक भक्त ने बताया कि जैसे गाय होती है ना, तो नॉर्मली गाय अपने आपको शहर में ज्यादा उदाहरण किसी को समझेगा भी नहीं, लेकिन जिन्होंने गोचारण किया होगा तो वो समझ सकते हैं। गाय अपने बच्चे को, जो थोड़ा बड़ा हो जाता है बछड़ा, एक्चुअली बहुत ज्यादा देर नहीं, थोड़े ही देर के अंदर वो पैदा होने के कुछ समय बाद ही, गाय कुछ दिन बाद ही उसको स्वयं पे छोड़ देती है, है ना। लेकिन कि ठीक है, अपना घास चर रहा है, घूम रहा है, लेकिन बछड़े पे ध्यान रखती है हमेशा, उसकी ओर देखती रहती है। और जब उस बछड़े को कुछ तकलीफ आने लगती है तो गाय भाग करके वहां जाती है। साधारण तो आध्यात्मिक गुरु गाय या वरिष्ठ वैष्णव उस गाय के समान ही है। नॉर्मली तो किसी सबॉर्डिनेट को या भक्त को, शिष्य को वो छोड़ देते हैं, वो अपने आप ग्रो करेगा धीरे धीरे जो है, लेकिन जब समस्या आती है तो वो स्वयं भी भाग करके आते हैं। जिस प्रकार श्री नारद मुनि व्यासदेव जब भागवतम का संकलन कर 18 पुराण करके उन्होंने संकलन किया था, लेकिन परेशान थे और विचार कर रहे थे कि मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आत्मावलोकन कर रहे थे, नारद मुनि यहाँ प्रकट हो गए तुरंत ही। तो जो गुरु तत्व है वो भगवान श्री कृष्ण डायरेक्ट करें, वो कृपा के जो है प्राप्त से कल्याण गुणा कृपा के माध्यम है, और भगवान कृष्ण करुणा सिंधु है। तो जब भी डिफिकल्टी होती है भक्तों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरु जो है उस गाय के समान तुरंत पहुंच जाते हैं मदद करने के लिए। किस माध्यम से आएंगे वो इनकंसीवेबल हो सकता है ना। तो हमें यही जानना चाहिए कि अगर वो ध्यान दे रहे हैं तो मेरी आंखों के आगे पर्दा है, उनको पता है कि इसको कितना ध्यान देना है, है ना। या तो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण सेवा कर रहा होगा या इसकी आवश्यकता होगी, है ना। तो रादर देन वांटिंग अटेंशन फ्रॉम गुरु, वी शुड पे अटेंशन टू अवर सर्विस, है ना। कि गुरु जी के आगे पीछे घूमने से, फोटो खिंचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वो भी अच्छा है, उनसे संग प्राप्त हो, सेवा प्राप्त हो, बप्पू संग प्राप्त हो, लेकिन उनके अटेंशन प्राप्त होने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, हम अटेंशन पे करें उनकी सेवा के प्रति, है ना। तो हम ये सोच सकते हैं जब किसी को अटेंशन प्राप्त हो, मे बी ही नीड्स इट, मे बी ही डिजर्व्ड इट, और मे बी दिस द टेस्ट ऑफ माई एटीट्यूड, है ना। इस प्रकार से हम एस्टिमेट कर सकते हैं। दूसरी परिस्थिति है जब किसी अन्य व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है, है ना, ये तो पूछिए मत। खासकर यू नो युवा वर्ग के अंदर ये बड़ी समस्या आती है, खासकर ऐसे तो हर के अंदर ही है, सबके अंदर ही है, युवा वर्ग तो क्या बोले, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग कौशल है, अलग अलग स्किल है, अलग अलग टैलेंट है। तो व्यक्ति को लग, कोई अच्छा प्रवचन दे सकता है, तो कोई अच्छा कीर्तन कर सकता है, कोई अच्छा मृदंग बजा सकता है, तो कोई अच्छा आरती कर सकता है, कोई अच्छा ड्रेसिंग कर सकता है, तो कोई अच्छा प्रबंधन कर सकता है, तो कोई बहुत अच्छा कुकिंग कर सकता है, तो कोई बहुत अच्छा प्रसाद बांट सकता है। प्रसाद बांटना भी कला होती है। एक जो है हम भी एक भक्त के घर पे गए थे प्रसाद पाने के लिए, तो जब तक वो भक्त सर्विंग कर रहे थे थोड़ा थोड़ा पा रहे थे, है ना, और क्योंकि उनको डर लगता था अब जितना बोला है उतना ही सर्व करो। फिर उनकी माता जी आई, है ना, अब हमें भी मना करते, संकोच हो रहा था, और वो देखते नहीं, माता जी को खिलाने का टेक्निक होता है सब, है ना, तो वो जबरदस्ती उठा करके डाल देते हैं, आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ सेवा की भावना होती है। तो प्रसाद परोसना भी एक कला है, खाली मैं कुल मिला के ये कह रहा था, तो कुछ परोस प्रसाद परोस सकता है। तो हर एक के अंदर जो है अलग अलग गुण होता है, अलग अलग टैलेंट होता है। तो अब जो है व्यक्ति को लगता है कि इस व्यक्ति को जो पद प्राप्त हुआ है, जिम्मेदारी प्राप्त हुआ है, इसलिए क्योंकि इसके पास टैलेंट है, और एक फिर टैलेंट हंट चालू हो जाता है ना। और व्यक्ति हर एक से ये अच्छा प्रवचन देते हैं तो कितना लाइक्स आता है यूट्यूब पे, यू नो ये कीर्तन करते हैं कितने लोग गाने के लिए आते हैं, ये मृदंग बजाते हैं, कितने लोग इनसे सीखने के लिए आते हैं, कितने लोग तारीफ करते हैं, जब ये ड्रेसिंग करते हैं तो कितने लोग वाह प्रभु क्या ड्रेसिंग किया है आपने, लोग स्पेशल दर्शन करते हैं, या जब वो प्रसाद बनाते हैं तो ऐसे जो है तो हर व्यक्ति एक कॉम्पिटिशन की भावना चालू होती है उसके अंदर, है ना। व्यक्ति ऐसा होता है मुझे भी अच्छा प्रवचन करता बताना, अच्छा कीर्तनिया बनना है, अच्छा कुक बनना है, अच्छा प्रबंधक बनना है ताकि लोग मुझे जानेंगे, इस प्रकार से। और ठीक है ऐसा कौशल होना अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने हर व्यक्ति को ऐसा कौशल दिया है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ कौशल दिया है, किसी को ऐसा नहीं भगवान ने अन्याय किया है कि किसी को छोड़ दिया, लेकिन हर एक के पास यूनिक टैलेंट है ना, वो एक खास बात है। तो जो है अब जो वृंदावन के अंदर चेतना होती है वह व्यक्ति सोचता है कि ये भक्त मेरे से अधिक बेहतर है कि नहीं, लेकिन भौतिक जगत के अंदर व्यक्ति के अंदर भावना रहती है कि मैं कैसे बेहतर बनूं। लेकिन तो इसमें हमें क्या मूल्यांकन करना चाहिए कि देखो चाहे मैं अच्छा कीर्तनिया हूँ, अच्छा प्रवचन करता हूँ, सदा के लिए मैं टॉप पे नहीं रहूंगा, है कि नहीं, क्योंकि भगवान की व्यवस्था है हमसे अच्छे कीर्तनिया, हमसे अच्छे प्रवचन करता, हमसे अच्छे पुजारी, हमसे अच्छे कुक, हमसे अच्छे प्रबंधक निश्चित रूप से आएंगे ही आएंगे, है ना। स्वाभाविक है कोई व्यक्ति ये नहीं कहता मैं एब्सोल्यूट हूँ, उससे बढ़िया, और जब कोई बढ़िया उससे अच्छा व्यक्ति आने लगता है, वो अच्छा हुनर वाला, स्वाभाविक है वो, है ना, लाइक दैट, तो उसके प्रसन्न होना चाहिए, एक्चुअली वो क्रेडिट प्राप्त करता है। तो हमारा चेतना क्या होना चाहिए, सही मूल्यांकन करके कि रादर देन बींग एनवियस आई विल असिस्ट हिम, आई विल सर्व हिम, क्यों, क्योंकि कृष्णा ने उसको वो गुण दिया है, और वरिष्ठ भक्तों ने से जिम्मेदारी इसलिए नहीं दी क्योंकि वो बहुत स्किलफुल है या टैलेंट है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। एक बारी इसी सभा के अंदर कई काफ़ी साल, एक दो साल हो गया होगा, पहले एक प्रश्न पूछा गया था, तब मेरा भी ये प्रश्न था, मैं ओपनली भी है क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बहुतों को रहता है कि प्रभु जी इस्कॉन के अंदर तो टैलेंटेड लोगों को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और जिसके अंदर टैलेंट नहीं है ना वो पीछे रह जाता है, तो इसका ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि लोगों का इन्फीरियरिटी होता ही है एक कि देखो मेरे अंदर गुण नहीं है, तुम अच्छा बोल नहीं सकते, गा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, तो तुम बेकार हो, है ना। और बचपन से ये ऐसा एक वो रहता है, घरों के अंदर भी ऐसे होता है ना, देखो पड़ोसी के बच्चे कितने मार्क्स आए, तुम्हारे तो इतने नहीं आए, तुम नालायक हो, ये हो वो हो, ऐसे ये कॉम्प्लेक्स इधर भी होता है, और लोगों को लगता है कि देखो इस कौन संस्था में तो भाई यहाँ तो जिसके पास गुण है, कुछ हुनर है, उसी की पूछ है, बाकी सब तो ऐसे ही है, उन्हें व्यक्ति को लगता है ऐसा, और कई बार उसको ठीक भी लगे कि शायद ऐसा हुआ भी हो, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी किसको दी जाती है, जो ट्रस्ट वर्दी होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो रिलायबल होता है ना, उसको जिम्मेदारी हमेशा दी जाती है। स्किल से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि हाँ इस व्यक्ति को कार्य दिया है तो करेगा, हो सकता है उतना अधिक टैलेंटेड ना हो, है ना, लेकिन ये विश्वसनीय है, ये मना नहीं करेगा, कार्य दिया है तो पूरी लगन के साथ करेगा, अपना बेस्ट करेगा। स्किलफुल व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या है, बोले करके दिखाना है, और उसके अनुरूप नहीं प्राप्त हुआ तो फिर वो छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर किसी को जिम्मेदारी मिले, चाहे वो हमसे अधिक टैलेंटेड नहीं भी हो, है ना, या हम अधिक टैलेंटेड हो, फिर भी सोचना चाहिए कि नहीं शायद ये अधिक रिलायबल होगा, अधिक विश्वसनीय होगा, विश्वास का पात्र होगा, इसीलिए इनको सेवा दी गई है, इसीलिए इनको जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। तो मैं कैसे अधिक ट्रस्टवर्दी और रिलायबल भक्त बन सकता हूँ, है ना, इसका हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटी महत्वपूर्ण है ना। और हमने अभी तक ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन जितना भी अभी तक हमें वरिष्ठ भक्तों के साथ प्रबंधन का अनुभव हुआ, तो हमने यही देखा अच्छे लीडर्स उन्हीं लोगों को पुट करते हैं जो विश्वसनीय होते हैं, है ना। मैं कुछ इसमें कोई उदाहरण नहीं दूंगा क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे मन में, लेकिन वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी उदाहरण है ना, तो किसी को कुछ हर्ट हो सकता है, लेकिन यही देखा चाहे उतना स्किलफुल हो चाहे ना, है ना, तो जो है ये हमको अवलोकन करना चाहिए। तो एस्टिमेट का दूसरा स्थिति जो मैंने बताया, तीसरा था किसी व्यक्ति को अधिक सुविधा प्राप्त हो रही है, रिसोर्सेज प्राप्त हो रहे हैं, सुविधा प्राप्त हो रही है, असिस्टेंट प्राप्त हो रहा है, टीम प्राप्त हो रहा है, ज़्यादा अधिक पैसा सैंक्शन हो रहा है, फ्रीडम प्राप्त हो रहा है, यार ऐसे ऐसे कई सारी प्रचार के लिए ही सुविधा प्राप्त हो रही है, तो हमें सोचना चाहिए हमें लगता है मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रही, यहाँ पार्शियलिटी है, इसकी अप्रोच है, मैं भी जैक लगा के ले लेता हूँ, ऐसा व्यक्ति को लगता है ना, ऐसा बहुत बार होता है। तो पर हमें सोचना चाहिए कि कृष्ण उसे अधिक सुविधा प्रदान कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो जानता है, उसने वो कला सीख ली है कि कैसे जो भी प्राप्त हो कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, और शायद मुझे वो कला प्राप्त हुई नहीं है, तो मैं क्यों ईर्ष्या करूं। ठीक है, मेरे को भी सुविधा चाहता हूं, यू नो कुछ फैसिलिटी चाहता हूं, लेकिन क्या कृष्ण ऐसा चाहते हैं मुझे देना? जैसे सुदामा जब कृष्ण के पास गए थे तो सुदामा की पत्नी ने बहुत आग्रह किया था, आप जाइए जाइए, आपके मित्र हैं, द्वारकाधीश हैं, भगवान हैं, उनसे कुछ मांगिए, इतना कष्ट हो रहा है। तो सुदामा तो हिचकिचा रहे थे, अब भगवान ने तो जो बेचारे थोड़ा सा चिड़वा लेके गए थे वो खा लिया, बदले में कुछ दिया नहीं। और जाते सुदामा सोच रहे, अरे एक शॉल भी नहीं दिया भगवान ने, फटाफट धोती दे गए, धोती तो देते कम से कम, वो तक नहीं दिया। तो जो है ऐसा हल्का सा विचार एक सुदामा के मन में भी आया, और दूसरा एक विचार इस प्रकार का था, एक विचार दूसरा था कि भगवान जो कितने महान हैं, इतने महान भगवान हैं, इतना ऐश्वर्य है उनका, उसके बाद भी मुझ जैसे फटेहाल ब्राह्मण का ऐसा स्वागत किया, मित्रता नहीं भूले जो है, तो दोनों भाव उनके अंदर था। लेकिन भगवान ने उस समय कुछ नहीं दिया, क्योंकि पूर्ण तरीके जब वो शुद्ध हो गए, गए तो देखा अरे कहाँ झोपड़ी के अंदर मेरा महल बन गया पूरा का पूरा, उनकी पत्नी तो चीथड़ों के अंदर थी और एकदम रेशम की साड़ी पहने हुए, ज्वेलरी डाले हुए, तो अरे कहाँ आ गया, गलत एड्रेस पे तो नहीं आ गया, कि रास्ता तो नहीं भूल गया उनको लगा। लेकिन क्यों भगवान ने दे दिया? क्योंकि भगवान जानते थे अब सुदामा भटकेगा नहीं कभी, जो है इस ऐश्वर्य के कारण मुझे नहीं भूल जाएगा। इसीलिए भगवान सुविधा के अगर भक्त को देते नहीं है, क्योंकि वो सुविधा लिप्त हो जाते हैं। वृंदावन जब मंदिर निर्माण हो रहा था, तो जब गुरुकुल की बिल्डिंग का निर्माण हुआ तो प्रभुपाद अवलोकन करने के लिए गए, निरीक्षण करने के लिए गए, तो भक्त ने बताया कि ये रूम जो है इन फलाने प्रभु जी का होगा, ये जीपीसी का रूम होगा, ये प्रिंसिपल का रूम होगा, ये स्टाफ रूम होगा, ये सब अपना अपना ऑफिस बता रहे थे। प्रभुपाद जी सब सुना, और प्रभुपाद जी तो अच्छे से मानसिकता जानते थे, पद्य जी की मानसिकता क्या होती है। प्रभुपाद ने उनको बोला आप पहले 500 बच्चे लेके आओ, उसके बाद रूम बांटना, ये रूम ऑफिस बनाने के लिए नहीं दिए, स्कूल बनाने के लिए दिए गए। तो तुरंत टारगेट दिया, क्योंकि प्रभुपाद जानते थे मानसिकता क्या है, जैसे सुविधा प्राप्त होती है तो मेरा ऑफिस, मेरा कमरा, अब मैं यहाँ पर रह के जो है सेवा करूंगा या शासन करूंगा जो भी, यू नो लाइक दैट। तो प्रभु जानते थे, प्रभुपाद सर नो, यू पीपल ऑल ट्रैवल एंड प्रीच। जैसे हम जानते हैं गौड़िया मठ के अंदर भी बागबदा जो गौड़िया मठ बना, तो लाइक इस बात पे हुई कौन सा कमरा, ये ईस्ट फेसिंग है, यहाँ विंडो है, यहाँ हवा आती है, यहाँ सुबह का प्रातःकालीन सूर्य आता है, तो यहाँ ढलते हुए सूर्य का नजारा है, यू नो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये जो लड़ाई सुविधा प्राप्त होते ही जो है ये ईर्ष्या द्वेष चालू हो जाता है समहाव, यू नो। और ये गौड़िया मठ में किन के बीच में ईर्ष्या द्वेष था? ये बच्चों के बीच में नहीं था, गृहस्थों के बीच में नहीं था, सन्यासियों के बीच में था, यू नो। ऐसा भी हमको कभी वो देख, इसका मतलब ये नहीं कि वो सन्यासी पतित थे, इससे ये मत लीजिएगा उदाहरण कभी, वो सब महान आत्मा थे। लेकिन बात ये है कि सुविधा प्राप्त होते ही इस प्रकार का देश प्राप्त आ जाता है कई बार। तो यदि किसी को प्राप्त हो तो हमें कंपीट नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं सोचना नहीं चाहिए, हाय मुझे नहीं प्राप्त हुआ, मुझे कैसे प्राप्त होगा, कहाँ जैक लगाऊं, कहाँ अप्रोच लगाऊं, किसकी चापलूसी करूं, किसकी सिफारिश करूं, मुझे नहीं प्राप्त हो तो उसका खींचो, नहीं। कृष्ण लेना चाहते हैं ताकि वो और कर सके, आई डोंट डिजर्व दिस, एज सिंपल एज दैट। तो इस प्रकार से हमको यह अवलोकन करना चाहिए, एस्टिमेशन। और चौथा, ये देखिए हृदय का पूरा ऑपरेशन है बेसिकली, यू नो, लेकिन हम सबको करना चाहिए, इससे कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। और चौथा जो प्रसंग है, जब किसी का गुणगान होता है, व्हेन समवन एल्स इज ग्लोरीफाइड। रावण के पास कितने कान थे? 10 सिर थे तो 20 कान होंगे, है कि नहीं? तो उसके लिए जो कितना बड़ा प्रॉब्लम था, भगवान राम का जब कोई गुणगान करता था, हनुमान आए थे, अंगद आए थे, विभीषण आए थे, और वो जब राम का गुणगान कर रहे हैं, उसको 20 कानों से सुनना पड़ रहा था, टॉर्चर था उसके लिए बहुत बड़ा, वो नहीं सुन सकता था, बोले वो वनवासी राम तपस्वी राम, वो ऐसा उसे लगता था। किसी का गुणगान जब होता है, ओ हो ना, तब तो जो आग लग जाती है, मेरा गुणगान क्यों नहीं हुआ, है कि नहीं? तो उस समय वो एक बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा है। तो हमें अब जो है इसका अवलोकन करना चाहिए, गुण किसका गुणगान चाहिए हमको, ना लोगों का या श्री भगवान का, लाइक दैट। मुझे सेवा से मतलब था या गुणगान से मतलब था? मैं प्रवचन इसलिए कर रहा था कि 50 लोग बाद में आके बोलेंगे प्रभु जी धन्यवाद, क्या प्रवचन दिया आपने, या इसीलिए कि कृष्ण और प्रभुपाद की सेवा के लिए जिम्मेदारी दी गई थी इसीलिए हम दे रहे हैं, है ना? या कीर्तन इसीलिए कर रहे थे, फिर देख रहे कितने लोग आए उसके अंदर, कितने लोग ताली बजा रहे, कितने लोग रह रहे, या फिर केवल फेस्टिवल के दिन पे लूंगा कीर्तन, या डीटी श्री विग्रह की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कीर्तन। तो इस प्रकार से हमको विचार करना चाहिए। तो लोग गुणगान करें ना करें, हमारा मतलब होना चाहिए गुणगान से, नहीं सेवा से। तो ये एक पहला सूत्र था एस्टिमेशन का। दूसरे तीन सूत्र छोटे छोटे हैं। तीसरा सूत्र, दूसरा सूत्र है नर्चर, भक्ति के भक्ति का जो भक्ति लता है, जो क्रीपर है, इसका हमें पोषण करना चाहिए, है ना? अर्थात हमें जो है पोषण करने का मतलब क्या है कि कभी भी हमें निंदा चुगली राजनीति के अंदर नहीं जुड़ना चाहिए। इसमें बहुत रस आता है, बड़ा आनंद आता है, कहाँ पे किसका पतन हो गया, कहाँ पे क्या बुराई है, कदाचित भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये भक्ति लता के लिए बहुत ही हानिकारक है। एक्चुअली आज के जो तात्पर्य है इसमें बहुत सारे सुंदर वाक्य हैं। एक वाक्य जो मेरे को बहुत बहुत ही स्ट्राइक किया, दो वाक्य हैं, वैष्णव के प्रति की गई सेवा धीरे धीरे संचित होती रहती है और भक्त के लिए वही संपत्ति बन जाती है। रियल वेल्थ वो होती है जो वैष्णव, लेकिन कैसे, धीरे धीरे, यू नो, क्रम अनुसार धीरे धीरे जब वैष्णव की सेवा करते हैं भक्त के लिए यही वो रियल एसेट है। और इसी प्रकार भक्त के विरुद्ध किए गए हानिप्रद कार्यकलाप धीरे धीरे कर्ता के पतन के कारण बनते हैं। तो जो गलत कार्य किए गए वो भी धीरे धीरे कारण बनते हैं। किसी को नहीं सोचना चाहिए मैं एक्सेप्शन हूं, एकाएक किसी का पतन नहीं होता। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति हम देखते हैं पदच्युत होता है, भक्ति के मार्ग से अलग होता है, एवरी केस इज अ हिस्ट्री। अब देखिएगा, धीरे धीरे चालू होता है और हमने बहुत करीब से कई भक्तों को देखा है और अपने जीवन के अंदर भी उपात उतार, भक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं कि कहाँ से डेविएशन प्रारंभ होती है ना, और उसका कहीं ना कहीं अधिकांश केसेस के अंदर रूट कॉज होता है किसी ना किसी प्रकार से वैष्णव अपराध या किसी ना किसी प्रकार के अपराध है ना। तो जो है किसी प्रकार निंदा चुगली बैकबाइटिंग नहीं करनी चाहिए, लाइक दैट। एक्चुअली जो एनवी है ये तो एक फीलिंग है, एक पैसिव फीलिंग है, मन के अंदर विचार आता है जो, यानी द्वेष। लेकिन ईर्ष्या है जब वो एनवी इन एक्शन, ईर्ष्या या जेलसी जिसे बोलते हैं, हालांकि एक ही बात है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन एनवी एक पैसिव फीलिंग है, यू नो, मेरे मन में किसी के प्रति एनवियस फीलिंग आ रहा है। और जेलसी मतलब जब मैं उस एनवी को, ईर्ष्या को, उस द्वेष को ईर्ष्या में लेके आ रहा हूं, एक्शन में लेके आ रहा हूं, अगर किसी का नुकसान कर रहा हूं, जब वो शब्दों में या एक्शंस के अंदर, कार्यकलाप के अंदर आता है, तब वो जो है वो बहुत ही खराब हो जाता है। मन में आना तो एक बात है, लेकिन जब वो वाक्यों में या कार्य में आता है तो बहुत ही अधिक जो है खराब हो जाता है। कम से कम हमें इतना जरूर करना चाहिए एज डिवोटीज, कभी भी किसी के पतन के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हमने देखा है कई बार भक्त को इतना अपराध बोध ले लेते हैं कि मान लीजिए किसी ने हमारे प्रति, मेरे प्रति कुछ बोल दिया तो बोले देखना तुम वैष्णव अपराध कर रहे हो और कृष्ण देख रहे हैं तुम्हारा पतन होगा। और कई बार जाके भगवान से प्रार्थना भी करते हैं भगवान का पतन हो जाए, ऐसा भक्तों ने भी शेयर किया है। ये दुर्भाग्य है, हम के अहंकार की चरम भावना है, हमको इतने महान थोड़े ही ना है कि भैया कुछ बोल दिया तो हम, हमारे अंदर कोई कमी नहीं है। कृष्ण के सामने शिशुपाल खड़े थे, भगवान सहन कर रहे हैं आराम से, है ना, और बलराम जी ने बोला तुम यहाँ खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हो, बोले मुस्कुरा नहीं रहा हूँ, गिन रहा हूँ, है ना, 100 तक वचन दिया था, नहीं दैट। लेकिन इतना गाली देने के बाद भी सबके सामने शिशुपाल के शरीर से जो आत्मा है निकल करके भगवान ने प्रवेश की, क्योंकि है तो जय विजय ही आखिरकार। कहने का अर्थ है कि भक्ति लता का पोषण करना चाहिए। भक्ति लता है गुणगान का विषय, निंदा चुगली का विषय नहीं है किसी प्रकार से। और निंदा चुगली करना बहुत आसान है, बहुत स्वाभाविक है और लॉजिकल भी लगेगा, पर्याप्त कारण होंगे हमारे पास क्यों मुझे निंदा करनी चाहिए। लेकिन सौभाग्यशाली है व्यक्ति यदि उसको एक और निंदक मिल जाए ये बोलने के लिए, प्रभु आप निंदा कर रहे हो, गलत कार्य कर रहे हो। दुर्भाग्य ऐसा है भक्तों के समुदाय में भी ऐसा संघ प्राप्त हो जाता है जहां एक को बढ़ावा देने वाले 4 और मिल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक सौभाग्य था, जब मैं कॉलेज में था तो हम उस समय बहुत 4-5 ही हम भक्त थे, और एक भक्त थोड़े से बहुत ही ना रसिक टाइप के भक्त थे, और मैं और एक और डिवोटी थे, हमारा अच्छा मित्रता था। ये डिवोटी थोड़े से मतलब भक्तों के विषय में ट्रांसेंडेंटल थे, मतलब अब समझ गए ट्रांसेंडेंटल मतलब, मतलब इसका हम जार्गन यूज करते हैं बेसिकली, कि तो हमें लगता था ये कैसे भक्त है, ये है वो है। और मैं और वो जो दूसरे मेरे मित्र थे, हम दोनों थोड़ा ज़्यादा एक्शन मैन टाइप के लोग थे, बोलो डाउन टू और प्रैक्टिकल और एकदम मेटिकुलस, दोनों परफेक्शनिस्ट थे। और ये भक्त थोड़ा अजीब अगरीब कार्य करते थे तो हमें बड़ा अजीब लगता था। तो आप देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, रोड डील भी करना है, साथ में सेवा भी करना है, सब करना है, क्या करें, नए भी थे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो एक बार हम दोनों ही सीनियर डोर से कभी बातचीत करने में हिचक आता था, हमको लगा हमारा इमेज खराब हो जाएगा, हम तो सर इच्छे भक्त तुम ऐसा सोचते हो इनके बारे में। तो हम दोनों ही आपस में ऐसे ही बैठे और गोये माँ खाती पृछति के बोले जो है बात करने लगे ऐसे, देखो ये ऐसे ऐसा करते हैं, ये है वो है। अब निंदा चुगली में ऐसा रस है, कब दिन कब रात पता नहीं, थोड़ा देर बात करते गए। समो अगले दिन वो जो मेरे मित्र थे, मेरे को तो लग रहा दिल हल्का हो गया, चलो अच्छा मैं अकेला नहीं हूँ जो ऐसा फील कर रहे हैं, और भी लोग हैं, ऐसा ही है। लेकिन अगले दिन वो जो मेरे मित्र थे तो उन्होंने बोला, देखो मुरली किशोर हमने ना बहुत बड़ा गलती किया कल। क्या गलती किया? अरे देखो हम लोग जो है अकारण ही, वो भक्त कैसा भी हो अच्छा जप करते हैं सेवा करते हैं, सिर्फ उनका थोड़ा स्टाइल अलग है, लेकिन ये ईर्ष्या द्वेष हमारे हृदय के अंदर है। हृदय के होना एक बात है, लेकिन हमने चर्चा करके दोनों ने अपराध किया है। मैंने बोला एक बार मुझे खराब लगा रहे, कल तक मेरे साथ आदमी मेरा अगेंस्ट हो गया, लेकिन बाद में मैंने बात रिलाइज किया, उनका बात तो ठीक है प्रभु, जो भी है एक तो आपने ऐसा सोचा बोलो तो आपके ऊपर कृष्ण की कृपा है, दूसरा आपने ये हिम्मत रखा मुझे बोलने का, ये बात बोलने का, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप मेरे शुभ चिंतक हो और आप धर्म का पथ का पालन करते हो, तो थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। अगली बार भी कभी होगा तो मैं भी आपको करेक्ट कर दूंगा, आप भी करेक्ट कर दीजिएगा। ये मित्रता है, वास्तव ये सौभाग्य है किसी को ऐसा बोलने वाला हो, है ना। मैं तो यही मानता हूँ ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, नहीं तो क्या है आप एक के बदले चार करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, नहीं नहीं बड़ी सरलता से मिल जाएंगे। सबके हृदय के अंदर कुछ ना कुछ रहता ही है, और किसी ना किसी को थोपने के लिए हमको ब्लेम का गेम चाहिए ही चाहिए। इसलिए भक्ति लता का पोषण करना चाहिए और इन व्यर्थ की बातों में से दूर ही रहना चाहिए। स्पष्ट बोल देना चाहिए, प्रभु जी आपके मन में कुछ होगा, आप सही होंगे, लेकिन जानते मैं अपरिपक्व हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाऊंगा, आपके प्रति अपराध करूंगा, जिसके सुनूंगा अपराध करूंगा। निंदा चुगली का क्लब मत बना लीजिए, ध्यान रखना चाहिए। तीसरा जो सूत्र था, तो ग्लोरीफाई करना चाहिए और किसी के पतन के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, पतन देख के खुश नहीं होना चाहिए, उल्टा प्रार्थना करनी चाहिए प्रत्येक भक्त के लिए कि वो भक्ति में लगा रहे, भक्ति में संपन्न हो और अधिक बढ़े, उसको खूब कृपा प्राप्त हो, प्रत्येक भक्त के लिए। और विशेषकर जो भक्त हमें कभी नहीं दिख रहे हो उनके लिए तो और प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना से ज्यादा मत कीजिए अगर आपके अंदर क्षमता ना हो। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और अपने हाथ में केस ले लेते हैं, जाके सॉल्व करेंगे उसको पकड़ करके लेके आएंगे, और पता क्या लगता है खुद ही दलदल में फंस जाते हैं उनके साथ में। जो है उससे बच के रहिए, क्षमता नहीं हो वो परिपक्व भक्तों के हाथ में छोड़ दीजिए, है ना। अभी मैं इतने सारे केस स्टडीज में एक भी नहीं लूंगा, क्योंकि वो है ना आज सुबह का ये घटना है कि कैसे जो है वरिष्ठ भक्तों का क्या योजना रहता है, तो मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता। हमने गोपाल कृष्ण महाराज से एक प्रश्न पूछा था, कुछ एक कल स्थिति आ गई थी रात के अंदर, हमें लगा कि हमने कुछ गलती कर दिया, तो सुबह जाके पूछा और महाराज ने इतना डिटेल में क्लैरिफाई किया दो ही मिनट के अंदर, लेकिन पर्याप्त मात्रा के अंदर। और वो पेशेंस महाराज का जानते कितने समय का था? लगभग लगभग 20 साल का। कोई एक भक्त थे और बीच में कुछ अलग हो गए थे और वापस आ गए, और महाराज ने बोला नो इज फुल्ली प्रॉपर एकदम, और लगभग एक गैप था 20 साल का। कभी हम सोचे कि नहीं हम उसको पकड़ के लेके आएंगे, नहीं वो भक्त वापस आए, राधिका रमन उनको लेकर के आएंगे। लेकिन हमें से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, वो भक्ति में लगे रहने चाहिए, भक्ति मार बढ़ोतरी हो उनकी, कभी भी दूसरे के पतन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो बहुत ही घातक जो है विचार है, पूरा डिमोनियक विचार है ये, है ना। और तीसरा सूत्र है विजिलेंस। विजिलेंस अर्थात देखना चाहिए, ये हमें शास्त्रों में और अन्य विचार करना चाहिए। विजिलेंट का होता है सतर्क रहना बेसिकली, कि वैष्णव अपराध के क्या नुकसान है, है ना, कि ईर्ष्या की वजह से होता क्या है वैष्णव अपराध होते हैं, और वैष्णव अपराध होते क्या होगा, यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़े वा छिंदितार सुखी जाए पाता, कि भक्ति लता पूरी नष्ट हो जाएगी, जो है ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि यदि मेरे को किसी भक्ति प्रति ईर्ष्या हो रही है तो मैं अपनी कब्र स्वयं खोद रहा हूँ, बस कब्र खोद रहा हूँ और समय के साथ उसी कब्र में खुद जाके दफन हो जाऊंगा। जितना मैं अपराध करूंगा ईर्ष्या करूंगा भक्तों से, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसे समय प्रतीक्षा कर रहा हूँ। और यहाँ प्रभुपाद जी सात पद में क्या लिख रहे हैं, हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र के विरुद्ध जितनी भी कार्यवाही की उन्हें भगवान गंभीरता पूर्वक देखते रहे। प्रहलाद महाराज ने एक भी चीज सीरियसली नहीं ली, लेकिन भगवान गंभीरता पूर्वक देख रहे थे, अपराध देखते जा रहे थे, कंड देखते जा रहे थे, और जब मारने की कोशिश की भगवान ने आके किसको मारा, हिरण्यकशिपु को। तो ईर्ष्या जो है कोई भक्त अपने प्रति सीरियसली ना ले, लेकिन भगवान बहुत गंभीरता पूर्वक देखते हैं और भगवान क्षमा नहीं करते, है ना। और इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट भक्तों के प्रति तो क्या, हमें अभक्तों से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एवरीबॉडी इज अ पोटेंशियल प्योर डिवोटी। साधक नौसी के भक्तों से तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, तो एक बात है ना, भक्तों से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब कौन भक्त बन जाए किसको पता है। अब प्रभुपाद जी 34 स्कंद के अंदर ध्रुव महाराज के प्रसंग में ही लिखते हैं कि जो उनकी सौतेली माता थी सुरुचि, तो तो उनके सांप से मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ध्रुव महाराज के प्रति अपराध किया था। जब अपराध किया तो ध्रुव भक्त नहीं थे, वो तो एक बच्चे थे छोटे से, किसी प्रकार शुद्ध भक्त नहीं थे। लेकिन उस समय का किया गया अपराध तो बाद में शुद्ध भक्त बन गए, लेकिन भगवान को ध्यान तस्करित अपराध किया है तो और तब उनको जाके परिणाम मिला। इस प्रकार से आपको भगवान प्रकट होते, भगवान ने बता दिया था कि तुम्हारी सौतेली माता की ऐसे मृत्यु होगी और तुम्हारे भाई उत्तम की भी मृत्यु होगी यक्षों के द्वारा, वो सब भगवान ने बोला था उनको। तो इसीलिए वो भक्त बन सकता है, बड़ा सतर्क रहना चाहिए, है ना। सो वी शुड ट्राई नॉट टू बी ऑफेंसिव एंड एनवियस टू एनी लिविंग एंटिटी। कोई बढ़ भी रहा है, किसी विभूति हो तो हमें देखना चाहिए भगवान की शक्ति है, लाइक दैट। और चौथा यर्न, यर्न मतलब हमें शुद्ध भक्ति की और भक्तों के भावना की और आगे बढ़ना चाहिए, लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, हम भी ऐसे महान भक्त बनेंगे। जैसे कल हरिजन गोपाल कृष्ण महाराज जब प्रवचन दे रहे थे तो नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर प्रसंग को बता रहे थे, है ना। और कल तो इतना डिटेल में महाराज बता रहे थे, है ना, एंड लेकिन किस प्रकार का रिस्पॉन्स नित्यानंद प्रभु और हरदास ठाकुर का था, वी शुड लुक फॉरवर्ड फॉर दैट बेसिकली, है ना। यार मतलब ये और इसका मतलब क्या है कि शुद्ध भक्तों का जो नजरिया होता है देखने का, जो उनका विजन होता है इन परिस्थितियों देखने का, ऐसा विजन मैं भी डेवलप कर सकूं। जैसे कल सारंग ठाकुर के बारे में बता रहे थे तो कैसे महाराज कहते हैं हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वैसी रुचि भगवान कृष्ण की सेवा करने में, रात कीर्तन करने में, और ऐसी रुचि हमें प्राप्त हो, तो ऐसे यू नो कृपा की भीख मांगना। और प्रभुपाद 34 स्कंद के अंदर जब पृथ्वी महाराज और इंद्र का थोड़ा झगड़ा हो गया, और बाद में किनका फोन है, आप थोड़ा ऑफ कर सकते हैं, किसी का फोन बज रहा है, तो पृथ्वी महाराज को भगवान कृष्ण इंद्र को भगवान स्वयं लेकर के आए विष्णु अपने साथ में, और बोला पृथ्वी महाराज को आप क्षमा कर दो इन्हें। तो इंद्र को भी इतनी ग्लानि हो रही थी तो पैर पड़ने लगे, लेकिन पृथ्वी महाराज ने तुरंत ही उनको जो है आलिंगन कर दिया और क्षमा कर दिया, और भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रभुपाद जी वहां लिख रहे हैं, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ एडजस्टिंग द कॉज ऑफ एनवी अमंगस्ट वैष्णवस, कि वैष्णव के बीच में ईर्ष्या हो सकती है, लेकिन परिपक्वता है कि ईर्ष्या के कॉज को एडजस्ट करना। कि जब पृथ्वी को बोल दिया कि 100 यज्ञ नहीं 99 कर, ठीक है क्या फर्क पड़ता है, मैं पीछे हट जाता हूं, ये है वैष्णव का बिहेवियर, यू नो इस प्रकार से। ठीक है मुझे बोला आगे आओ तो आगे आया, बोला छोड़ दो छोड़ दिया, क्या फर्क पड़ता है, यू नो देयर इज यर्निंग, नहीं नहीं ऐसे कैसे छोड़ दूंगा, यू नो नो। तो ये जो शुद्ध भक्तों का है, तो ये है एनवी को जो काटने का, ये 4 सूत्र मैंने आपको बताया, ENVY, यू नो एस्टिमेट जो है सही मूल्यांकन करना, नर्चर भक्ति लता का सिंचन करना, वी विजिलेंस अवलोकन में, और वाई यर्न भक्ति जो है क्रय करना। तो एनवी को एनवी से ही काटने के लिए ये सूत्र है ENVY, जिसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार के द्वेष से जब हम दूर होंगे तभी हम स्वयं भी मध्यम के स्तर पे आगे आएंगे। द्वेष अलाउड है किससे, प्रेम मैत्री, द्वेष नहीं अलाउड है, सॉरी, द्वेषी लोगों से भी कैसे डील करना है, द्वेष नहीं करना है, द्वेषी लोगों को भी उपेक्षा करनी है, नेग्लेक्ट करना है। अर्थात भक्त को एनवी का कोई स्कोप नहीं है, मतलब आपसे भी कोई द्वेष करे तो आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट कर सकते हो। नेग्लेक्ट करने का अर्थ क्या है, ये नहीं उसको देखना नहीं है, इसका अर्थ है उसके साथ कृष्णा कॉन्शियसनेस शेयर नहीं करना है। यदि कोई द्वेष करे तो आपको क्या होना चाहिए, और अधिक संवेदनशील होना चाहिए, हाय मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण इसका नुकसान हो रहा है, मैं अपने में क्या बदलाव ला सकता हूं, कहां मैं झुक सकता हूं, कहां मैं और दया दिखा सकता हूं, कहां मैं क्षमा कर सकता हूं, ये अपॉर्चुनिटी है मेरे पास में जब मेरे को ये परिस्थिति कोई मुझे पर्सनल लेवल पर फेस करनी पड़े। और जब मुझे दूसरों द्वेष को देखना चाहिए, हाय मेरा अहंकार कितना बड़ा है, जो है कैसे मैं सेवा करूं, कैसे मैं सही दृष्टिकोण अपनाऊं, उसका पोषण ना करूं, है ना। और यहाँ पे दुर्वासा मुनि को यही शिक्षा भगवान दे रहे हैं कि दुर्वासा तुम बिना देरी किए बिना या ही माँ चिरम अम्बरीश के पास जाओ और क्षमा मांगो, अर्थात उनकी सेवा करो जा करके, क्योंकि इसके अलावा और कोई रक्षा नहीं कर सकता, तुमने बहुत भारी गलती की है। और भगवान इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, क्यों सीरियस लेते हैं, कल के श्लोक में साधवो हृदयम मह्यम, क्योंकि भगवान के हृदय में साधु रहते हैं, भगवान का हृदय है भक्त, और जब भक्तों को कोई पीड़ा पहुंचाता है, सोचिए भगवान के हृदय को पीड़ा पहुंचती है। ये प्रभुपाद जी गलत आत्मा लिख रहे हैं। हाथ पैर में कहीं चोट लगती है फिर भी आदमी सहन कर लेता है, हृदय में पीड़ा को सहन करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे देखा जाए फिजिकली तो हार्ट अटैक है चाहे, और सूक्ष्म रूप से कोई कड़वे वचन बोल दे तो बड़ा खराब लगता है। सच बात है कि नहीं? वो किसी भी, टंग हैज नो बोन्स बट इट हैज द पावर टू ब्रेक बोन्स, है ना, लाइक दैट, है कि नहीं? कोई कड़वा वचन बहुत, कितने सालों तक आपने, इतने साल पहले मुझे ये बोला था, अगर आज कितने समय तक। फिजिकल पेन किसी को होता है थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, लेकिन जो हृदय में पेन होता है जाता नहीं है। इसीलिए भगवान किसी के द्वारा की गई सेवा कभी भूलते नहीं है। ऐसे ही भगवान तब तक वैष्णव अपराधी के अपराध को नहीं भूलते जब तक वो उसका निराकरण खुद नहीं करता। ऐसे अनेक अनेक उदाहरण है शास्त्रों के अंदर अनेक जगह पर। इससे हमें शिक्षा लेना चाहिए कि वैष्णव अपराध जो है बहुत ही घातक है हमारे भौतिक जीवन के लिए। एक श्लोक मैंने कई साल पहले भी भागवतम क्लास के अंदर ही इसी विषय पर कहीं आया था जो है वैष्णव अपराध के ऊपर, तो अपने पुराने नोट निकाले तो एक श्लोक मैंने लिखा था, उसके बाद मैं जो है विश्राम कर रहा हूँ, विराम देता हूँ कथा को। वो श्लोक है कि वैष्णव अपराध होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो छह प्रकार के वैष्णव अपराध होते हैं, तो सबको पता होंगे, लेकिन श्लोक इस प्रकार से है। वो श्लोक इतना खतरनाक नहीं है, उसके बाद में एक दूसरा श्लोक है, वो जब मैंने सुबह भी पढ़ा तो मैं एकदम हिल गया, मैं भी पढ़ करके जो है। हाँ, निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा वैष्णवानां महात्मनां पतन्ति पितृ साधम महारौरव संगीत हन्ति निंदन्ति वै द्वेष्टि वैष्णवां वा नाभिनंदति क्रुध्यते याति वा हर्षम दर्शने पतना नियत। वो बोल रहे हंति, किसी को वैष्णव को मारना, छह प्रकार के अपराध है। पहला है फिजिकली मारना, निंदति उसकी निंदा करना, ना अभिनंदति उसको देख करके अभिवादन नहीं करना, हरे कृष्णा नहीं बोलना, मुंह चुरा के ले जाना ना, ऐसा रहता है, कोल्ड वॉर चलते रहता है वो नहीं। चौथा क्रोधित होना, क्रुध्यते याति वो हर्षन, और देख करके प्रसन्न नहीं होना, दर्शने पतना नियत, और किसी महान वैष्णव को देख के प्रणाम नहीं करना। छठा मैं थोड़ा आप चेक कर लो क्या है। तो निंदाम कुर्वन्ति ये मूढ़ा, जो मूर्ख लोग निंदा करते हैं किसकी, वैष्णवाना महात्मना, वैष्णवों की महात्माओं की। पतन्ति पितृ भी साधु महारौरव संगीत है, वो कहां जाते हैं, पितरों सहित महारौरव नरक में जाते हैं। ये नहीं, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र वचन है, इसीलिए से बचना चाहिए। कभी कभी डर भी अच्छा है किसी चीज से बचने के लिए, है ना, कि अरे भाई बी वेयर, दुर्घटना हो जाएगी, तो इसीलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए। वैष्णव समुदाय के अंदर हमें एक ही चीज भटका सकती है, कोई बाहर का शत्रु कुछ नहीं कर सकता हमारी भक्ति को और वैष्णव के समुदाय को। सिर्फ एक ही चीज वैष्णव के समुदाय में समाप्त जो है उसका नुकसान कर सकती है इंडिविजुअली कलेक्टिवली, वो क्या है, भक्तों के बीच में मतभेद, ईर्ष्या द्वेष। जिस प्रकार वो दावानल पान था, यू नो, जिसने वृंदावन में आग लगा दिया था, वही प्रभुपाद जी भक्त ठाकुर कह रहे थे देयर विल बी फायर इन द मठ। इसी ने गॉडिया मठ रोड इंटीग्रेट किया, और यही पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष जो है इस्कॉन को भी नष्ट भ्रष्ट कर सकता है और हमारी भक्ति को समाप्त कर सकता है। तो अपने को बचाने के लिए और हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब अपने अपने भक्ति के स्तर को आगे बढ़ाएं और हृदय को शुद्ध करें। जय श्री प्रभुपाद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरे बोल। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए, जिनको निकलना हो निकल सकते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ थोड़ा लंबा लिया, लेकिन मैंने इसलिए समय लिया क्योंकि महत्वपूर्ण प्रसंग है, तो जिनको जाना आप जा सकते हैं, किसी का प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, आप इनके बाद आप।
हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, आपने डिटेल में बताया ये भक्तों के बीच में।
थोड़ा जोर से
बोलो। आपने बताया कि दावानल को भक्तों के बीच में मतभेद और ईर्ष्या द्वेष, भक्तों के बीच में मतभेद, तो मतभेद या फिर डिफरेंस ऑफ भक्तों के बीच में मतभेद को आपने दावानल किससे कंपेयर किया अभी आखिरी में, तो ये मतभेद है, होता क्या है, वो बता सकते हैं, मतलब कि मतलब डिफरेंस ऑफ
मतभेद, मतलब जब अपने अपने मतों में भेद होता है उसका मतभेद, मेरा मत ये, मेरा मत वो।
तो जैसे कभी बार सुनते हैं कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है।
यस, देयर शुड नॉट बी डिफरेंस ऑफ पर्पस। तो मतभेद का मेरा अर्थ ये, जब पर्पस ही डिफरेंट हो, पहला ये। और कभी कभी हम उस मतभेद को इतना सीरियसली ले लें कि अंतिम लक्ष्य जो कृष्ण की प्रशंसा से भटक जाए, है ना। कई बार मतभेद डिटेल्स में इतना फंस जाते हैं कि कृष्ण की प्रसन्नता को भूल जाते हैं, मतलब मुख्य लक्ष्य वो है। कृष्ण अनेक माध्यम से प्रसन्न हो सकते हैं, तो हमें उस जो सेंट्रल फोकल पॉइंट है वो देखना चाहिए rather than going into unless details basically। एक माता जी उसके बाद हाँ बोलिए ना।
इस वाक्य को आप प्लीज पूरा कर दें, वैष्णव के लिए की गई सेवा संचित होती जाती है वही बाद में
भक्त के लिए संपत्ति बन जाती है। ये आज के तात्पर्य के अंदर है एज इट इज परपट में। वैष्णव के प्रति की गई सेवा धीरे धीरे संचित होती रहती है और भक्त के लिए वही संपत्ति बन जाती है। इसी प्रकार भक्त के विरुद्ध किए गए हानिप्रद कार्यकलाप धीरे धीरे कर्ता के पतन के कारण बनते हैं।
अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने बोला कि हमें विश्वसनीयता प्राप्त करनी चाहिए, तो मतलब उसका मापदंड क्या है एक्चुअली? यानी अगर चाहे वो हम लीडर के लिए प्रति कह लें या किसी सीनियर वैष्णव के लिए, तो उसका मापदंड क्या हम माने, मतलब कि कैसे हम विश्वास।
आपका प्रश्न अगर मैं समझ पाया कि कैसे हम अपनी रिलायबिलिटी ये प्रूव कर सकते हैं कि हम रिलायबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं सिर्फ उतना शेयर कर सकता हूँ जो मैंने व्यवहारिक देखा है, मुझे शास्त्र का उदाहरण तो कोई नहीं याद आ रहा। विश्वसनीयता प्राप्त होती है क्रमशः धीरे धीरे, और कैसे कि यदि आपको एक कार्य दिया गया तो आप उस कार्य के प्रति कितने मतलब सजग रहते हैं, पूरा करते हैं। तो जब वो देखते हैं कि इसने बड़ा अच्छा कार्य किया तो फिर अगला उसको और जिम्मेदारी दी जाती है। तो जैसे कि मान लीजिए प्रारंभ कैसे होता है, मतलब हम भी अपने जीवन में जो हमें भी वरिष्ठ भक्तों ने कैसे प्रशिक्षण दिया इत्यादि, वो ये था एक कार्य दिया, चलो जाके प्रसाद सर्विंग करना है। अब आपने ठीक है एक राउंड सर्विंग करके भी चले गए, यू नो, चलो पहले एक पंगत में बांटे चले गए या अंत तक रहे, यू नो, और जो है बाद में वाइंड अप भी किया, मान लीजिए प्रसाद ही पाया लेकिन किया, तो देखा अरे ये तो जो इसको मैंने बोला तो आज्ञा का पूरा पालन किया, ऐसा नहीं काम चला वो काम करके चला गया, मन मार के चला गया, ऐसे नहीं। तो बोलेंगे चलो अगली बार इसको कुछ और सेवा देते हैं, उसको वाइंड अप इंचार्ज बना दिया, बोला अच्छा एंड में भी रहा, तकलीफ की सेवा किया तो और विश्वसनीयता बढ़ गया, तो बोला इसको प्रसाद सर्विंग इंचार्ज ही बना देते हैं अभी, है ना। तो ऐसे धीरे धीरे क्रमशः विश्वास बनता है। हमें तो याद है एक बार मैं झाड़ू लगा रहा था, वो सबसे गंदा एरिया मेरे को दिया था, वो बड़ा कंजेस्टेड एरिया था, इतना वो पूरा अनाज बना रखते थे वहाँ पे, मैंने निकाल कर सब साफ किया कर रहा था अभी, तो बड़ा सारा गंद निकल रहा था, ढेर लगा के रखा एक जगह और बाकी दूसरी तरफ लगा रहा था, लेकिन उस रास्ते के अंदर थोड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ था और कुछ बचा था। तो जो हमारे पास शिक्षक थे वो आए, उनका भी तरीका बड़ा विचित्र था, वो प्रेम भी बहुत करते थे और बिना बोले ही मैसेज दे देते थे, मतलब संदेश उनको देने की कला थी कि बिना बोले संदेश, बहुत जोर से संदेश जाता था, कई बार हम बहुत जोर से बोलते हैं लेकिन संदेश नहीं जाता, वो बिना बोले इतना जोर संदेश देते थे। तो आए मेरे को लगा को तारीफ करेंगे, अरे वाह क्या चमका दिया तुमको रूम को, अब मैं सोच रहा था वो आए और वहाँ पे आए और ऐसे थोड़ा पैर लगाया, मैं देखा क्या देख रहे हैं, बोले मुरली कृष्ण बस इशारा किया उधर भी रह गया है, मेरे को ऐसा जा करके लगा तो है, मैं बोला हाँ प्रति करता हूँ अभी। तो मेरे को एक चीज़ समझ आ गया उस समय, मेरे को क्या संदेश गया, संदेश ये नहीं गया कि मेरे से गंदगी रह गया, संदेश ये गया कि हमारी सेवा को हमारे वरिष्ठ भक्त या छोटी भी सेवा क्यों ना हो देखते हैं, और उस सेवा वो सेवा हमारे ये दिखाने के लिए कि हमारे अंदर कितना कौशल है, वो ये देखते हैं कैसे ये भगवान की सेवा के लिए और परिपक्व बन जाएगा, इसीलिए थोड़ा कमी निकालते हैं। तो उनके मार्ग, तो जब वो कमी निकालें और ठीक करें उससे विश्वसनीयता बढ़ती है। जब डिफेंड करेंगे हम, नहीं नहीं मैंने इतना किया, कर रहा हूँ, कर तो रहा हूँ, अभी बचा है, अभी नहीं हुआ था, भूल गया था ये वो, तो फिर हमारा कभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता। तो ये लेसन जो उन्होंने सिखाया मेरे को, कितना साल हो गया, कम से कम नहीं तो अभी 12-13 साल हो गया होगा, लेकिन मुझे 2005 आसपास चार की घटना है, नहीं जाती पाँच की होगी, 2005 में अभी तो संदेश याद है कि नहीं किस प्रकार से वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन रहना चाहिए, वो बहुत ही सेफेस्ट है, नहीं जाती। तो इस प्रकार से जो है हमको दे दे मार्गदर्शन, मतलब ये नहीं चिपके रहो उनके साथ में, आपको जो जिम्मेदारी दिया उसको कीजिए आप, है ना। जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन है, कीजिए, कोई देखे ना देखे आप रिकॉग्नाइज होंगे, आप देखिएगा, आप प्रयास कीजिए, स्वाभाविक रूप से आप रिकॉग्नाइज होंगे। तो जो आपको सेवा प्राप्त हुई है उसको अच्छे से कीजिए, धीरे धीरे विश्वसनीयता बढ़ेगी। दैट इज वन डिसिप्लिन। यस चलो। माइक दे सकते हैं? आप किसी भक्त का गुणगान कर रहे हैं?
हरे कृष्णा, मैं किसी भक्त का ग्लोरिफिकेशन कर रहा हूँ और साथ में दूसरे भक्त भी हैं, और मैं जानता हूँ कि दूसरे भक्तों को इससे, जो मैं सामने वाले का ग्लोरिफिकेशन कर रहा हूँ, दूसरे को ईर्ष्या भी हो सकता है, और दोनों ही भक्त हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मदर का मैं ग्लोरिफिकेशन कर रहा हूँ,
नहीं, मैं समझ गया, कोई
और साथ में वाइफ भी बैठी है, तो उसके मन में कुछ हो सकता है, ये तो देखो मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ उनके लिए, मेरी तो कुछ कभी तारीफ नहीं करते मदर का, ऐसे
इसके बारे में उदाहरण के लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, ये पारिवारिक चीज है।
नहीं मतलब कॉमन
वो विषय वो संवेदनशील है।
फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, ऐसा नहीं कि वहीं पे
हाँ ऑफकोर्स ब्रह्मचार्य तो ब्रह्मचार्य उदाहरण देते हैं, गृहस्थ आश्रम तो गृहस्थ उदाहरण देंगे, वो बात ठीक है, मैं प्रिंसिपल समझिए आपकी बात। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं कि यदि हम हमें वैष्णव समुदाय में क्या करना चाहिए उसके उसके अंदर। श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी का गुणगान कर रहे थे, रूप गोस्वामी को तो कोई जानता नहीं था क्योंकि वो तो राम के लिए के अंदर नवाब हुसैन शाह के वो थे, वहीं से सीधा चले गए इलाहाबाद, और इलाहाबाद से भेज दिया महापुण्य वृंदावन। तो जितने उड़ीसा के वैष्णव थे, पूरी के वैष्णव थे, कोई जानते नहीं थे रूप गोस्वामी कौन है, कैसे जानेंगे उससे, मतलब मेल व्हाट्सएप फेसबुक तो होता नहीं था। तो फिर महाप्रभु को मिलने के लिए रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी आए, तो महापुरुष सबको इंट्रोड्यूस कराया रूप गोस्वामी को, बड़ा गुणगान करते हुए। और जब रूप गोस्वामी आए थे तो बलभद्र भट्टाचार्य वो जानते थे क्योंकि इलाहाबाद में महाप्रभु के साथ थे, तो उन्होंने बता दिया था ये कौन है, रूप गोस्वामी है। और दस दिन प्रयाग में महाप्रभु ने वन ऑन वन क्लासेस दिया इनको, नो एक्सक्लूसिव, एक वक्ता एक श्रोता, बस 10 दिन ये वो रेसिपिएंट है रूप गोस्वामी, ये एम्पावरमेंट दिया है। तो हरे कृष्ण, तो बलभद्र भट्टाचार्य ने ऐसा बताया था कुछ वैष्णव को, लेकिन महाप्रभु जो है वहां पर, हरे कृष्ण, वहां पर जब रूप गोस्वामी गुणगान कर रहे थे तो महाप्रभु नोट भी कर रहे थे बाकी वैष्णवों की क्या भाव भंगिमा है ना, कहीं रूप गोस्वामी का जब गुणगान करते तो महाप्रभु भी नोट कर रहे थे बाकी जो वैष्णव है उनकी क्या भाव भंगिमा है, उनके मन में क्या चल रहा है, महाप्रभु नोटिंग इट, क्या एक्सप्रेशन है ना। महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए जब देखा कि जितने सारे भक्त थे बहुत हर्षित हुए कि इस भक्त को महाप्रभु इतना गुणगान कर रहे हैं, इसको इतनी कृपा प्रदान की है ना। तभी फिर जब बाद में एक पत्ते के अंदर लिख करके रूप गोस्वामी ने एक श्लोक जो महाप्रभु गा रहे थे किसी को नहीं पता था, तो वही श्लोक को लिख करके उन्होंने रूप गोस्वामी ने पत्ते पे लिख करके और छत पे ऐसा टांग दिया और स्नान के लिए चले गए। और महाप्रभु आए, पत्ते को निकाला और स्वरूप दामोदर से पूछते हैं, अरे भाई ये रूप को कैसे पता कि मेरे मन में क्या है ना। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, प्रभु जिसको आपकी कृपा, जिसको आप ही ने कृपा प्रदान की हो आपका मन जानने के लिए, तो उसके बारे में आप क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि उसको आपका मन प्राप्त है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, इसीलिए रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र है, स्थापितम ये न भूतले। तो महाप्रभु बहुत केयरफुल थे, उसके लिए हमें ग्लोरिफिकेशन का आर्ट चाहिए सब भक्तों का। अगर आपको लग रहा है कि भक्त परिपक्व नहीं, सबका गुणगान कर दो, और यदि किसी का आभार प्रकट करना चाहते हो तो प्राइवेट में कर दो ताकि दूसरा भक्त ईर्ष्यालु ना हो। मेच्योरिटी सीखना पड़ेगा ऐसा परिपक्व, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो हमारी प्रशंसा और उन दोनों के बीच में बेचारे मतभेद हो गया, ईर्ष्या द्वेष हो गया, तो उसका क्या फायदा, तो मेच्योरिटी सीखना है ना कि नहीं। यस बात,
निंदा का पार्ट नहीं होता वो, लेकिन फिर भी उस चीज को सॉर्ट करने में वो विक्टिम हो जाता है, वो टॉर्चर हो जाता है, तो उसको ये चीज कैसे सॉर्ट, मतलब प्रैक्टिकली कैसे उसको।
आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि दो भक्तों में कोई झगड़ा हो गया या कोई इस्कॉन छोड़ के चला, मतलब ऐसा बीच में भक्तों का संग थोड़ा विमुख हो गया, आप उसको वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं या दो भक्तों के झगड़े का मीडिएटर बन रहे हैं आप, उस परिस्थिति में आप कह रहे हैं। पहला तो ना कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए थोड़ा ट्रेनिंग चाहिए होता है, इवन प्रैक्टिकल लेवल पे भी नहीं देते, इवन स्किल लेवल यू नीड सम ट्रेनिंग, लोगों के झगड़े को कैसे सुलझाया जाए। दूसरा उसके लिए बहुत ही उन्नत चेतना चाहिए कि झगड़ा सुलझे चाहे ना सुलझे, एक बड़ा विरक्ति चाहिए मेरा प्रयास है दोनों की चेतना को उत्कृष्ट करना, है ना। इसीलिए बहुत उन्नत वैष्णव ये झगड़े सुलझा सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कली में झगड़ा चलता ही रहेगा। तो लेकिन मैं क्या करूं कि झगड़े के बीच में भी दोनों की चेतना उत्कृष्ट हो। जैसे कि अमेरिका के अंदर न्यू वृंदावन फॉर्म खोला, लेकिन वो लीडरशिप में थोड़ा सा वक्त नहीं रखा, थोड़ा झगड़ा हो गया। तो प्रभु ने बोला ठीक है, इधर 3 घंटे की दूरी पे एक और फार्म हाउस खोल दे शरणागति। बोलो क्यों, दोनों के थोड़ा मतभेद था, चलो दोनों सेवा करेंगे कृष्ण की। तो इसीलिए अब झगड़ा नहीं भी सॉल्व हो रहा तो कोई बात नहीं, धीरे जब दोनों शुद्ध हो जाएंगे तो फिर सॉल्व हो जाएगा। शुद्ध कैसे होंगे, भगवान की सेवा करने से, है कि नहीं। तो कई बार हम भी जब झगड़ा सुलझाते हैं तो बड़ा विरक्ति चाहिए उसके लिए। सुलझे चाहे ना सुलझे, मेरा काम है दोनों को, हमारा सेवा क्या है कि दोनों कृष्ण की सेवा ना छोड़े। क्योंकि कई बार सुलझाने के चक्कर में और सेवा छूट गया तो बड़ा नुकसान हो गया, लेकिन लगाए रखना पड़ता है। तो कई बार इसलिए देखते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ वैष्णव समाज की खास बात है, भक्त आपने झगड़ा करके फिर भी साथ में रहते हैं, ये केवल वैष्णव समाज के अंदर है। अगर वैष्णव ना हो तो फिर तो मार कुटाई वैसी हो जाती है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब है कुल मिला के आपके प्रश्न के उत्तर देते हुए कि इसके लिए ना थोड़ी परिपक्वता की आवश्यकता है। यदि ना हो परिपक्वता तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, वरिष्ठ भक्तों से पूछिए। हमने भी कभी झगड़ा सुलझाने का प्रयास किया तो वरिष्ठ भक्तों से बात किया कि अरे भाई हम करें कि नहीं करें, पहले आप बताओ। तो वो पूछे कि ठीक है कीजिए। कई बार बोला नहीं नहीं अभी वो माया के अंदर है, आपकी बात नहीं सुनेगा, कुछ समय बाद में करना, है ना। कई बार हमको बोला नहीं नहीं आई एम टेकिंग केयर, यू डोंट वरी, विल डील विद इट। मैंने महाराज को रिसेंटली हम महाराज से मिलने के लिए गए थे, मैंने बोला महाराज ऐसे दो भक्तों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया था या नहीं, बोले हाँ आई नो एंड वी सॉल्व्ड इट लॉन्ग बैक। मैं तो उन भक्त से अभी मिला था, मेरे मित्र थे। तो मैंने बोला महाराज ऐसे ऐसे उन के बीच में हो गया, मेरा थोड़ा चिंता है, और बताया कि वो मेरे रिश्ते में ही है, कुछ रिश्ते के तो मेरा बहुत क्लोज संबंध है। महाराज बोले हाँ एक्चुअली उनका थोड़ा स्ट्रांग नेचर है, लेकिन हमने सॉल्व कर दिया, ये भक्त भी इतने अच्छे हैं, वो दूसरे बहुत दोनों गुणगान करके मेरे को वापस भेज दिया। तो कहने का मतलब है अर्थात हमको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमारे ऊपर वाले हैं देख रहे हैं, उनको मालूम है कब क्या करने का है, अननेसेसरी टेंशन लेने की क्या जरूरत है कि नहीं। तो मैं तो ये कह सकता हूँ, और उसके बाद बीच बीच में वरिष्ठ भक्तों से चेक जरूर करते रहे कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी झगड़े के भी सुलझाने में इतना टाइम चला, अपना जब खराब, भागत स्टडी खराब, अपना चेतना निकृष्ट हो जाता है और हम फंस जाते हैं किसके अंदर, ये सही ये गलत। ये झगड़ा कभी सुलझा नहीं सकते, क्वेश्चन ही नहीं होता ये सही है गलत। अरे दोनों ही सही हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, भगवान की सेवा करना है, क्वेश्चन ये है कैसे कृष्ण के साथ आगे बढ़ा जाए, ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न है ही नहीं मैं सही या मैं गलत, तुम सही तुम गलत, तुम्हारे गलत प्रूव होने से ये सिद्ध नहीं होता मैं सही हूं। तो हमें वो ये कोर्ट है ही नहीं, हमारा काम है ये बताओ एडजस्ट कैसे करना है, मिशन को आगे बढ़ाना है या सहयोग का हमें कार्य करना है। तो उसलिए बोलना है हाथ जोड़ के पैर पड़ के, लेकिन प्रभु कृष्ण की सेवा करो, इस्कॉन में सेवा करो, है ना। कितना भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस्कॉन छोड़ के मत जाओ। क्यों? क्योंकि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का सबसे जो ब्रह्मास्त्र है यही हमको सिखाया जाता है। दोनों पार्टियों को ये बोलो, विल योर एटीट्यूड प्लीज शिला प्रभुपाद, क्या आपका झगड़ा या जो एटीट्यूड है क्या शिला प्रभुपाद को प्रसन्न करेगा। दोनों पार्टी बोलते नहीं तो छोड़ दो, और आपको लगता है प्रसन्न करेगा तो करते रहो, ऐसे ठीक है कि नहीं। आई होप आई सेटिस्फाइड योर क्वेश्चन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, इतना आसान नहीं है, खासकर भक्तों के बीच में झगड़ा सुलझाना हो। क्यों नहीं, आपको मैं एक दो मिनट देंगे उदाहरण देता हूँ आपको। देखो झगड़ा हो गया किसके बीच में, चतुष कुमारों के बीच में और जय विजय के बीच में, और बहुत ही जगत में नहीं, वैकुंठ के 6th-7th अंतिम द्वार के ऊपर, वो भगवान के द्वारपाल ये भक्त, झगड़ा उधर भी हो गया है कि नहीं। सुलझाने के लिए आना किसको पड़ा, स्वयं भगवान को, दो झगड़ा झगड़ा हो गया। अब बाद में भगवान बोले देखो मेरी इच्छा से हुआ, श्राप मिला ना मेरी इच्छा से, मेरा युद्ध करने का इच्छा था, तुम लोग जाओ, लक्ष्मी ने वैसे ही श्राप दिया था, चतुष्मा तो माध्यम ही है खाली, तुम सेवा कर रहे थे तो सब योजना था भगवान का, वो योग माया का झगड़ा था, है ना। दूसरा झगड़ा ये आ गया 3rd स्कंद के अंदर, 4th स्कंद के अंदर झगड़ा किसके बीच में हो गया, एक धरती के राजा पृथ्वी महाराज भगवान के शक्ति आवेश अवतार, एक स्वर्ग के राजा इंद्र, दोनों देवासुर नहीं है, एक भगवान के शक्ति आवेश अवतार और एक है देवताओं के राजा इंद्र, और झगड़ा हो गया घमासान दोनों के बीच में, इतना झगड़ा हो गया पृथ्वी महाराज अपना बाण लेकर के निकल पड़े इंद्र को मारने के लिए। तो अत्रि और सब मुनि ने क्या बोला, बोले महाराज आप बैठ जाओ, ये यज्ञ है, ये वधशाला नहीं है, यज्ञशाला है। आज तक इतिहास के अंदर ऐसे मंत्रों का भी जाप नहीं हुआ, हम उनका जाप करेंगे, इंद्र को आहुति देते थे, आज इंद्र की आहुति दे देते हैं, ये उनका था। बोले लेकिन आप पद मत कीजिए, आप यजमान हैं, आप मत कीजिए। तो वो ऐसा मंत्र जाप करने लगे, इतना झगड़ा, सोचिए मरने मारने पर जब उतर आए तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और आते ऐलान किया, क्या बोले पृथ्वी 99 के कर चुके हैं, संतुष्ट हो जाओ 99 से, 100 मत करो, क्यों जितना आप करते जा रहे हो इंद्र इनसिक्योर होते जा रहे हैं। पृथ्वी मान ने बोला जैसी आपकी आज्ञा। वो नहीं आ सकते थे, मेरी क्या गलती है, मैं तो यज्ञ ही करा रहा है, इतना धरती के लिए मैंने सब किया ना, वो एकदम डिटैच। वरिष्ठ ने बोल दिया मेरा काम क्या था, वरिष्ठ की प्रसन्नता, क्रिएशन किसका है, ब्रह्मा जी का है, स्वर्ग चला रहे इंद्र, मैं चला रहा पृथ्वी, दोनों की टेंशन किसकी, ब्रह्मा जी की थी और उसके ऊपर भगवान की, तो मैं तो उनके बिहाफ पे कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे अटैच और डिटैच होने का फायदा मेरे को करना है, उनको चलाना है, वो बैठे राधिका में कृष्ण बोल रहा है, मंदिर उनका चलाना उनको है, मैं अपना कार्य करूं, जैसे चलाना है भगवान चलाएंगे, मैं अपना सेवा पूरा करूं। तो पृथ्वी महाराज यही सोच रहे थे कि भाई जब ब्रह्मा जी ने बोल दिया तो बस, मैं उनके बिहाफ पे कार्य कर रहा था, जहां तक बुद्ध यज्ञ कर रहा था छोड़ दिया बस, बिल्कुल। आना किसको पड़ा, ब्रह्मा जी के लिए, अब ब्रह्मा जी को आना पड़ा, उसके बाद कौन आया, जब उन्होंने यज्ञ छोड़ दिया तो भगवान विष्णु स्वयं आए। अभी तो सिर्फ एक मतलब क्या बोलते हैं, दूरी बना सेटल किया था अभी, अब मित्रता करने के लिए बोले दोबारा हो जाएगा। तो पृथ्वी को लेकर भगवान विष्णु स्वयं आए, इंद्र को लेकर के पृथ्वी को बोले मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्यों प्रसन्न हूँ, 99 के इसलिए नहीं, इसीलिए आपके जेंटलमैनली क्वालिटीज के कारण, आपके शील संपन्न, आपके गुणों के कारण मैं बहुत प्रसन्न हूँ जो है। और फिर भगवान क्या वरदान देते हैं, भविष्य में तुम्हें चतुष्कुमारों का संग प्राप्त होगा, खुद आ गए वो वरदान नहीं है, और तुम उनसे मेरे विषय में श्रवण कीर्तन कर पाओगे, श्रवण कर पाओगे ये। और फिर बोलते हैं इनको क्षमा कर दो, तो पृथ्वी का क्या टेस्ट है, और पृथ्वी ने तुरंत क्षमा कर दिया, फिर भगवान भी आप पे कार्य कर रहा हूं। बस एक झगड़ा हो गया, किसके विषय, किसके बीच में, छठे स्कंद में झगड़ा हो गया इनके बीच में, इंद्र और माता दिति के बीच में, दिति के मन में आया कि इसने इंद्र को मारने वाला पुत्र होना चाहिए। कश्यप मुनि ने क्या उनको बोल दिया, बोले आप पयोव्रत के हो क्या, कौन सा व्रत था, पयोव्रत या हाँ पयोव्रत ही था, पुंसवन पयोव्रत, ऐसा बोला ये करो। वो ऐसा तपस्या दे दिया उनको पूरा का पूरा, उनका हृदय शुद्ध हो गया। और एक समय पयोव्रत का विधि का पालन नहीं करते हुए थोड़ी चूक हो गई, तो इंद्र गर्भ में घुसे और वो भ्रूण के 49 टुकड़े कर दिए, है ना। और तो दिति माता जब जागी तो बोले ये क्या हुआ, तो फिर उन्होंने तो जो है अदिति भी तपस्या शुद्ध हो चुकी थी और इंद्र के मन का भी मैल समाप्त हो चुका था, तो उन्होंने बोला कि ये सब इंद्र के शत्रु नहीं, इंद्र के छोटे भाई बनेंगे, तो मरुत्तगण, क्यों, क्योंकि कृष्ण जब केंद्र बिंदु में आ गए झगड़े ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो गए। तो कई बहुत बड़ी झगड़ों को रिजॉल्व करने के लिए केवल वरिष्ठ भक्त और भगवान ही कर सकते हैं, हम ज्यादा उसमें हस्तक्षेप करेंगे तो काम और खराब करेंगे, बेटर भगवान को वरिष्ठ भक्तों को करने दो, और कुछ नहीं। थैंक यू, हरे कृष्ण। प्रभु जी निवेदन कर रहे हैं आप जो है सब ऊपर जाके प्रसाद प्राप्त कीजिए।